आत्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चातुर्यैक निदान सीम चपला पांगच्छटा मंथरम लावण्यामृत बीचि लोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षाद्रितम कालिंदी पुलिनांगनां प्रणयिनां कामावतारांकुरम बालं नीलम बीयम मधुरिमा स्वाराज्यमाराध्मुमः। मज जन्मना फलम इदं मधुकैठवारे मत्पार्थनीया मदनुग्रहये सैव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हरे कृष्ण। स्नान यात्रा के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप लोगों को इस भागवत कक्षा में स्वागत है। आज एक अत्यंत पवित्र दिवस है जो कि भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का उत्सव है। असलियत में पूरे साल के 365 दिन श्री भगवान के उत्सवों से भरा हुआ रहता है और ये सारे उत्सव या भगवान की सारी लीलाएं हम जैसे पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए ही होते हैं। कितना अच्छा लगता है कि उत्सव का समय आता है तो हाल में ही पांडव निर्जला एकादशी गया, कितना अच्छा दिन था। दिन भर कोई दूसरा चिंता नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन, भागवत श्रवण और भक्तों का संग, इन सारा इस प्रकार की दिव्य वैकुंठ वातावरण में दिन भर बिताना पड़ा। रोजाना तो इस प्रकार के जीवन हमें बिताना ही चाहिए, परंतु इस उत्सवों के दिनों में हमको और अवसर मिलता है कि भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए और कीर्तन करने के लिए। हमें तो लगता है कि यही मुख्य उद्देश्य है कि भगवान की इस प्रकार की लीलाएं करने के पीछे, कि उनके भक्तों को उनकी लीलाओं का स्मरण करने के लिए मौका दिया जाए। इसलिए हमेशा जो भक्त लोग होते हैं अत्यंत उत्साही रहते हैं उत्सव के दिनों पर, और हमेशा इंतजार करते हैं कि कभी उत्सव आएगा, कभी जन्माष्टमी आएगा, कभी रथ यात्रा आएगा, कभी स्नान यात्रा आएगा, कभी निर्जला एकादशी आएगा, कि हम लोग इस प्रकार से भक्ति के अंगों को एकदम से करने लगेंगे। तो इसलिए हमें भी मानसिक स्तर से प्रिपेयर रहना चाहिए कि इन उत्सवों में ज़्यादातर भगवान के नामों का जप कीर्तन और भागवत श्रवण में या उनकी लीलाओं का श्रवण में बिताएं, और उसी उत्सवों के दिनों में भगवान की उस लीला के बारे में श्रवण करने से हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो संबंध है, और अत्यंत गाढ़ हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि उन दिनों में भगवान की लीलाओं के और उसी लीला के संबंधित कथाओं को श्रवण करें, जिसके द्वारा भगवान के साथ हमारा जो संबंध है और गाढ़ीभूत हो जाए और हम नजदीक हो जाएं श्री भगवान का, और इस भौतिक संसार के वातावरण को और इस भौतिक संसार के संबंधों को और इस भौतिक संसार के सुखों को एकदम से भूलकर भगवान की दिव्य नित्य लीलाओं के कथाओं में, लीलाओं के कथनों में निमग्न हो जाएं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी को कि हे जगन्नाथ, आप हमेशा इस प्रकार के उत्सव हमारे लिए बनाते रहें और लीलाएं करते रहें, हर हम श्रवण करते रहें, और कृपा करके हमें याद दिलाएं कि, और ये मुझे इस प्रकार से विचार में रखिए कि मैं आपके दासों का दासों का दासों का दास हूं, और इस प्रकार से आपके भक्तों का सेवा करते करते उनकी मुखारविंद से इन भगवान के उत्सवों के बारे में श्रवण करते करते ये जीवन बीत जाए। ये बहुत अच्छा दिन है कि आज पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव का दिन है। जिस प्रकार से जन्माष्टमी होता है, गौर पूर्णिमा होता है, रामनवमी होता है, इन दिनों में भगवान रामचंद्र, भगवान परम पुरुष स्वयं श्री कृष्ण और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव का प्राकट्य का दिवस होता है, उसी प्रकार से ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि, इस तिथि पे जो जगन्नाथ हैं, इस दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए थे इस धराधाम में, उस दिवस को स्नान यात्रा के रूप में, ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान यात्रा के रूप में पूरे संसार भर के लोग इसको पालन करते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के जगह आज का जो श्लोक है वो कल चर्चा होगा, और आज हम खास करके इन भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के बारे में थोड़ा सा जो कुछ भी हमने किताबों से पढ़ा है उसको हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी के, भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की जैसे अनेकों और अनंत लीलाएं हैं, मगर ऐसे कई लीलाएं हैं जो कि अभी तक लोक गोचर नहीं हुआ है, प्राकट्य नहीं हुआ है, कुछ तक के लोगों को ही मालूम है। यहां तक भी अनेकों स्थानों पे लोग भगवान जगन्नाथ जी के इस विग्रह को जानते भी नहीं है, इस प्रकार क्यों है। हम गुरुवार के दिन कांदिवली में एक प्रोग्राम में गए थे, कुछ लड़कों को बता रहे थे, तो उन्हें हमने पूछा कि आपने जब भी राधा गिरधारी मंदिर गए तो वहां पे देखे होंगे अल्टर में कौन कौन है, तो उसमें से कुछ लोग, मैं पूछा कौन कौन है जो कि नहीं जानते हैं अल्टर में कौन कौन है, तो उसमें से ऐसे कहीं 5-6 लड़के हाथ उठाए, और सभी लोगों का कहना लेफ्ट हैंड साइड में जो राधा और कृष्ण का विग्रह वो तो मालूम है, मगर राइट साइड में जो तीन विग्रह रखा हुआ है मूर्तियां, वो नहीं मालूम कौन है। भारतवर्ष में लोगों को मालूम नहीं जगन्नाथ जी के बारे में, सुने हुए हैं वो लोग जगन्नाथ पुरी हैं, रथ यात्रा होता है जगन्नाथ जी का, मगर ऐसा रूप है जगन्नाथ जी का करके वो देखे नहीं है, एक कार्टून जैसा रूप है। इस प्रकार से भगवान का रूप जो है खास करके बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। एक बार पिछली साल की बात है, जगन्नाथ लीला के ऊपर यहीं पे प्रवचन हुआ का हो रहा था, और हमेशा बच्चों को जगन्नाथ जी आकृष्ट करते हैं, और एक बच्चा चढ़ गया, मगर वो राधा गिरधारी के पास नहीं गया, वो जाके जगन्नाथ जी के पास देखने लगा, उनको चिढ़ाने लगा, और सब लोग चिल्लाने लगे कि बच्चा अल्टर के अंदर चला गया था, इतना आकर्षक लगते हैं उनका विग्रह इस प्रकार सा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से प्रसन्न रूप में इस कलयुग में लोग नहीं जानते, उस प्रकार से जगन्नाथ जी कलयुग का पतित पावन अवतार होने पर भी लोगों के मन में जगन्नाथ, लोगों के पास जगन्नाथ जी का उतना ज्ञान नहीं है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी का कृपा है इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर, धराधाम के लोगों के ऊपर, कि उन्होंने जगन्नाथ पुरी से जगन्नाथ जी को लेकर पूरे विश्व में विख्यात कर दिए। ये तो जगन्नाथ जी का कृपा है, प्रभुपाद जी का कृपा है हम लोगों के ऊपर। जैसे भी हो, इसके बारे में सविशेष रूप से रथ यात्रा से पूर्व 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक 7 दिन संध्याकालीन 7:45 से लेके 9 बजे तक जगन्नाथ जी के ऊपर कथा होगा। उसमें विशेष रूप से जगन्नाथ जी के इन गुह्य तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, मगर आज का मुख्य विषय यही रहेगा कि स्नान यात्रा और स्नान यात्रा संबंधित और कुछ ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं। भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में मुख्यतः स्कंद पुराण में वर्णन आता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, या उसमें भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं के बारे में वर्णन की गई है, ठीक उसी प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी और उनके धाम जो जगन्नाथपुरी के बारे में विशेष रूप से वर्णन स्कंद पुराण में पाया जाता है। ये जो स्कंद पुराण है व्यासदेव जी के द्वारा रचित अष्टादश पुराणों में से, या व्यासदेव जी के द्वारा रचित मुख्य 18 पुराणों में से सबसे बड़ा यानी बृहत पुराण है। लगभग स्कंद पुराण में ये जो स्कंद पुराण लगभग 81,000 श्लोकों को संकलित करके ये स्कंद पुराण गठित है। पुराण का मतलब यही है कि कई जगह पर इनके बारे में प्राप्त होता है, पुरातन कथा को भी जो नए तरीके से प्रस्तुत करें। पूरा पुरातन कथा होगा, पुराना कथा होगा, मगर उसको जितनी बार भी हम पुराणों से पढ़ेंगे नया ही लगेगा, वो पुराण है। और कई जगह पर बताया गया है पूरा मतलब वेद और वेदांत की उलझन वाले तथ्यों को, फिलोसफी को सरलीकृत रूप से लोगों के सामने जो प्रस्तुत करता है वो पुराण है। वेद और शास्त्रों में, वेद और वेदांत में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, फिलोसफी है, जो कि हमारे जैसे मन को सीधी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से जटिल सिद्धांतों को जो सरल रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है वो पुराण है। अगर उदाहरण से देखें, देखिए सारे वेदों का जो सारे कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वेदास वेदांत सूत्र है, जो कि स्वयं व्यास देव जी ने ही रचना किया था, मगर फिर उस वेदांत सूत्र को समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम ने लिखा। उन्होंने श्रीमद् भागवतम में क्या है, सारे स्टोरियां हैं भगवान की लीलाओं के, अवतारों के, है ना, सृष्टि के। कितना आसानी से श्रीमद् भागवतम समझ में आता है, मगर हम अगर वेदांत सूत्र पढ़े तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। तो यह पुराण है। वेद और वेदांत को सरलीकृत रूप से जो लोगों के सामने प्रस्तुत करता है वो पुराण है। तो इस प्रकार से जो व्यासदेव जी के द्वारा रचित 18 पुराण है, उस पुराणों में से सबसे बड़ा या बृहत पुराण है स्कंद पुराण। इस स्कंद पुराण में अनेकों खंड है, विभाग है। अनेकों खंडों में से एक खंड का नाम है, एक विभाग का नाम है उत्कल खंड। असलत में ये जो उत्कल शब्द उड़ीसा का नाम हुआ करता था। अभी जो उड़ीसा कहते हैं उसको उड़ीसा से पहले उत्कल कहते थे, और उत्कल से पहले भी उड्र देश कहते थे। अगर इंडियन हिस्ट्री देखेंगे या उड़ीसा का हिस्ट्री देखेंगे तो इसके बारे में वर्णन आता है। उड़ीसा का नाम अभी उड़ीसा है, उससे पहले उत्कल था, और उत्कल से पहले उड्र देश, इस प्रकार से नाम हुआ करता था। तो इस पुरुषोत्तम ये जो स्कंद पुराण के एक भाग है उत्कल खंड, खंड मतलब भाग, उत्कल खंड। इस उत्कल खंड में पुरुषोत्तम महात्म्य करके एक अध्याय है। इस पुरुषोत्तम महात्म्य अध्याय में संपूर्ण रूप से भगवान जगन्नाथ जी और भगवान जगन्नाथ जी के जो धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र, इस क्षेत्र का महात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है इस स्कंद पुराण में। ये जो पुरुषोत्तम महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ये इस प्रकार से ये कथा गुरु शिष्य होते हुए आया था। असलियत में सर्वप्रथम भगवान स्वयं श्री नारायण इस कथा को ब्रह्मा जी को बताए थे। ये भगवान जगन्नाथ जी की कथा और पुरुषोत्तम के महात्म्य की कथा भगवान श्री नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को बताया, और ब्रह्मा जी ने शंकर जी को बताया, शिव जी को। शिव जी ने उन्हें महर्षि स्कंद को बताए और महर्षि स्कंद ने उन्हें जैमिनी ऋषि को बताए और जैमिनी ऋषि ने मंदराचल के पर्व पर अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो हमारे पास जो स्कंद पुराण प्राप्त हुआ है, ये स्कंद महर्षि के द्वारा बताया हुआ था जैमिनी ऋषि को, मगर फिलहाल जैमिनी ऋषि ने अपने शिष्यों को बता रहे हैं मंदराचल के पर्वत पर, और उन कन्वर्सेशन को जैमिनी ऋषि एंड हिज डिसिपल्स, उनके शिष्यों का कन्वर्सेशन को प्रस्तुत की गई है स्कंद पुराण में। तो ये पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा इस प्रकार से आया, सर्वप्रथम स्वयं नारायण ब्रह्मा जी को बताएं, ब्रह्मा जी शिव जी को बताएं, शिव जी ने स्कंद महर्षि को बताएं और स्कंद मुनि ने जैमिनी ऋषि को बताएं और जैमिनी ऋषि ने अपने शिष्यों को मंदराचल के पर्वत पर बताते हैं। इसमें संपूर्ण विशद विवरण होने पर भी, विशद विवरण जगन्नाथ जी के बारे में है, एक जगह पे जगन्नाथ जी के उत्सवों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है कि श्री जगन्नाथ जी का कितना उत्सव मनाया जाता है और क्या क्या है उत्सव, और उन उत्सवों का वर्णन एक जगह पाया जाता है उस पुरुषोत्तम महात्म्य के अंतर्गत। असलियत में उस स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो जगन्नाथ जी के जो उत्सव है जगन्नाथपुरी में मनाते हैं जगन्नाथ जी के लिए, मुख्यतः 12 उत्सव है, 12 फेस्टिवल्स, 12 उत्सव जगन्नाथ जी के लिए मनाया जाता है। मगर उड़ीसा में लोक कथा है, ऐसे लोक प्रचलित है, उसके ऊपर बहुत सारे भजन भी है, 12 मासे 13 जात, 12 मासे मतलब 12 महीनों में, 13 जात मतलब 13 जात मतलब फेस्टिवल्स, 12 महीनों में 13 फेस्टिवल जगन्नाथ जी का मनाया जाता है करके उड़ीसा में इस प्रकार से प्रचलित है। स्कंद पुराण और एक लोकल पुराण भी है कालसार करके, जिसमें जगन्नाथ जी का वर्शिप के बारे में बताया गया है, उसमें जगन्नाथ जी का 12 उत्सव के बारे में वर्णन आता है। ये 12 उत्सव इस प्रकार हैं, शुरू से लेके स्नान यात्रा, रथ यात्रा, शयन यात्रा, कर्क संक्रांति, दक्षिणायन, पार्श्व परिवर्तन, देव उत्थापन, ओढ़ना षष्ठी, पुष्य अभिषेक, दोल उत्सव, दमयंक चतुर्दशी और अक्षय तृतीया, इस प्रकार से ये 12 उत्सवों के बारे में ये पुरुषोत्तम महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णन आता है। तो इन 12 उत्सवों में से सर्वप्रथम उत्सव जो है जगन्नाथ जी का, वो है स्नान यात्रा। तो ये सर्वप्रथम स्नान यात्रा उत्सव के बारे में विशद विवरण है, उसको चर्चा करने से पहले ये जो जितने 12 उत्सव में बताया उनको एक एक दृष्टि डालेंगे कि ये सारे उत्सव क्या है। स्नान यात्रा सर्वप्रथम फेस्टिवल, जो फर्स्ट फेस्टिवल है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी सर्वप्रथम जब ही दारू से जगन्नाथ जी के रूप बनाया गया या जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने उनका स्थापना किए थे मंदिर में, तो उस समय जगन्नाथ जी को स्नान करवा के या अभिषेक करवा के जगन्नाथ जी का स्थापना हुआ था, और ये अभिषेक करने के बाद स्थापना से पहले भी कुछ 15 दिनों तक जगन्नाथ जी को अनवसर के टाइम पर रखा गया था। इस समय को स्नान, इस उत्सव को स्नान यात्रा उत्सव करके कहा जाता है, रथ यात्रा। और ये स्नान यात्रा कभी होता है, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि में ये स्नान यात्रा पालन होता है। असलियत में ये जो जितने भी सारे वर्णन है, हमें ये इंग्लिश कैलेंडर से ज्यादा तालमेल नहीं बैठता है, हमारा उस वैदिक कैलेंडर में जो वैशाख ज्येष्ठ करके नाम आता है महीनों का, उसमें उस प्रकार से वर्णन हुआ है। ये 12 महीनों का नाम इस प्रकार से है, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र, इस प्रकार से 12 महीना है। तो ये जो सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर जो ज्येष्ठ मास है, इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि पर भगवान जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव मनाया जाता है। रथ यात्रा, ये रथ यात्रा हम सबको मालूम है कि जगन्नाथ जी का रथ के ऊपर बिठाकर उनका यात्रा की जाती है, उनकी मंदिर से उनकी गुंडीचा मंदिर तक ली जाती है, और बाहुड़ा रथ यात्रा होता है 9 दिनों के बाद। ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन ये उसका उत्सव का पालन की जाती है। तीसरा उत्सव है शयन यात्रा। आप लोग साल में चार महीना ऐसा कहा जाता है कि ये चतुर्मास की शुरुआत, चतुर्मास में भगवान विष्णु या नारायण वैकुंठ में रेस्ट लेते हैं, यानी विश्राम करते हैं ये चतुर्मास में। तो ये चतुर्मास की शुरुआत जब भी होता है, एक शयन एकादशी करके आता है, उस समय जगन्नाथ जी का रथ में वापस आए हुए रहते हैं अपने मंदिर के लिए, मगर रथ से उतरे हुए नहीं रहते हैं। उस समय ये शयन एकादशी आता है। तो उस दिन जगन्नाथ मंदिर से तीन विग्रहों को पुजारी लाता है। अनंत शेष को लेके आते हैं बलदेव जी के रथ पे, नारायण को लेके आते हैं जगन्नाथ जी के रथ पे, और भुवनेश्वरी को लेके आते हैं सुभद्रा जी के रथ पे। और इन तीनों के रथ में पूजा करके, उनका पूजा विधि करके, भोग लगा के फिर वापस लेके जाते हैं मंदिर में इन तीनों विग्रहों को, और चार महीने के लिए उनको विश्राम देते हैं। इसको शयन यात्रा कहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो शयन यात्रा शयन नहीं करते हैं, वैकुंठ में विष्णु करते हैं। इसलिए अनंत शेष और नारायण और भुवनेश्वरी जो है कि लक्ष्मी, इन तीनों को लाके पूजा करके लेके जगन्नाथ मंदिर में फिर से सुला देते हैं, और वो चार महीना के लिए। फिर कर्क संक्रांति करके एक उत्सव है जो कि सूर्य का दक्षिणायन होता है। उसके बाद आता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन उत्सव क्या है, जब भगवान सोते हैं चतुर्मास की शुरुआत में तो एक बाजू ही सोए हुए रहते हैं, तो जैसे ही चतुर्मास का दो महीना बीत जाता है तभी भगवान करवट बदलते हैं, दूसरे करवट पर सोते हैं, उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, मतलब करवट बदलना। ये भी भगवान का एक उत्सव है, जो तीनों विग्रह को सुलाए हुए रहेंगे का करवट बदलते हैं पुजारी लोग, उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। देव उत्थापन, जब चतुर्मास का अंत होता है, चतुर्मास के अंत में भगवान को जगाना रहता है कि अभी बहुत विश्राम कर चुके हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत एकादशी जब आता है, श्री भगवान को तभी उत्थापन करते हैं, देव उत्थापन कहते हैं। और पुष्य मास में पूर्णिमा की तिथि में एक प्रकार की स्नान होता है जगन्नाथ जी का, उसको पुष्य स्नान कहते हैं। जगन्नाथ जी का दोड़ यात्रा होता है, उसको दोड़ यात्रा कहते हैं। दयना यात्रा करके हैं, जो कि भगवान की विग्रहों को, जगन्नाथ जी के विग्रहों को दयना वृक्ष करके एक वृक्ष है, उसके पत्रों के द्वारा सजाएंगे, उसको दयना उत्सव कहते हैं। इस प्रकार के 12 उत्सवों के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन आता है। इसके अलावा भी और एक उत्सव जो कि उड़ीसा के लोक कथा के अनुसार कहते हैं 12 मास से 13 जातो, यानी 13 उत्सव पालन करते हैं, जो कि स्कंद पुराण में तो वर्णन नहीं है, मगर 13 उत्सव होता है, उसको सीक्रेट रखा गया है, प्रच्छन्न छुपा कर रखा गया उस उत्सव को। वो उत्सव इस प्रकार से है, वो उत्सव वैशाख मास में होता है, और इस वैशाख मास में भगवान जगन्नाथ जी का और एक अभिषेक होता है, मगर कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है कि जब ही जगन्नाथ जी को श्री मंदिर यानी उनका मेन टेम्पल में इंस्टॉल किया गया, स्थापना किया गया, उस समय ये वैशाख मास था और ये वो उत्सव है, उसको त्रयोदश उत्सव कहते हैं, त्रयोदश यात्रा यानी 13th फेस्टिवल उसको कहते हैं, मगर ये खुले आम वर्णन नहीं है, ये छुपा कर रखा गया। तो इस प्रकार से 12 और लगभग 13 यात्राओं के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में वर्णन है, मगर केवल 13 ही यात्रा नहीं है जगन्नाथ जी का। जैसे मैं शुरुआत में कहा कि भगवान की लीलाएं, भगवान की उत्सव 365 दिन होता ही रहता है, अगर वैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के हिसाब से अगर हम देखें, अनेकों उत्सव मनाते हैं। अभी खासकर कभी जो रिसेंट न्यूज आया था उससे, उस तथ्य से पता लगता है, उस डेटा से, कि फिलहाल 58 मेन फेस्टिवल्स मनाते हैं, मुख्य उत्सव जो है 58 उत्सव मनाते हैं जगन्नाथ जी का। और वैसे छोटे मोटे उत्सवों को लेंगे तो असंख्य अनेक उत्सव है, मगर अभी मेनली 58 उत्सव मनाते हैं, उसमें से 12 जो 13 उत्सव जो है सबसे मुख्य, जो कि शास्त्र में वर्णन आता है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का उत्सवों को मनाया जाता है। तो उन सारे मुख्य उत्सवों में से एक मुख्य उत्सव जो कि आज हम लोग मनाने जा रहे हैं, स्नान यात्रा, और इस स्नान यात्रा में आप लोग देखें जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार है वो एक विशेष ढंग से हुआ है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ इंद्रदुम्न महाराज को कहते हैं कि हे राजा, ओ किंग, आई अपीयर्ड ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ यष्ठ, मैं इस यष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पे अवतरित हुआ हूं, इसीलिए इस तिथि में मेरा स्नान यात्रा मनाओ। ये जगन्नाथ जी का आदेश है राजा इंद्रदुम्न के लिए, ये स्कंद पुराण में पाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव के पीछे थोड़ा सा अगर सिद्धांतिक दृष्टि से देखें तो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल के पहले 50 साल को प्रथम प्रारब्ध कहते हैं, या फर्स्ट प्रारब्ध, और 51 से लेकर 100 साल तक की समय को सेकंड प्रारब्ध या द्वितीय प्रारब्ध कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पहले प्रथम प्रारब्ध में नील माधव के रूप में पूजा पाते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी के सेकंड प्रारब्ध यानी द्वितीय प्रारब्ध में जगन्नाथ जी का रूप लेते हैं और नील माधव के रूप में वो निवास नहीं करते हैं। तो ये भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी के पहले 50 साल वो नील माधव के रूप में रहेंगे और दूसरे 50 साल वो जगन्नाथ जी के रूप में रहेंगे। अभी ब्रह्मा जी के 51वां साल चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51 साल हो चुका है। अभी ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में लगभग 14 मनु आते हैं या 14 मनवंतर कहते हैं। एक मनु के अंतर्गत 71 दिव्य युग आते हैं, और एक दिव्य युग में 4 युग रहते हैं, जैसे कि सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली। तो ब्रह्मा जी के जो द्वितीय प्रारब्ध भी चल रहा है, मतलब 51वां साल ब्रह्मा जी का चल रहा है, इसीलिए भगवान नील माधव से जगन्नाथ जी का रूप ले चुके हैं। और ये भगवान जगन्नाथ जी से जो नील माधव का रूप लिए 51वां साल में या द्वितीय प्रारब्ध में, तो ब्रह्मा जी का जो पहला दिन शुरू हुआ, ये 51वां साल का पहला दिन शुरू हुआ, तो एक दिन में 14 मनु होते हैं, और इस 14 मनु में से सर्वप्रथम जो फर्स्ट मनु है उनका नाम है स्वयंभू मनु। पहला मनु जो 14 मनु है, 14 मनु का नाम इस प्रकार है: स्वयंभू मनु, सरचिका मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुषा, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष श्रावणी, ब्रह्म श्रावणी, धर्म श्रावणी, रुद्र श्रावणी और इंद्र श्रावणी। इस प्रकार से 14 मनु होते हैं। इन 14 मनु में से सर्वप्रथम फर्स्ट मनु जो है वो है स्वयंभू मनु। तो भगवान जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी के 51वें दिन में यानी द्वितीय प्रारब्ध में स्वयंभू मनु के अंतर्गत सत्य युग में प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी के रूप में नील माधव। और अभी कौन से मनु राज कर रहे हैं? अभी राज कर रहे हैं वैवस्वत मनु। अभी वैवस्वत मनु का टाइम चल रहा है, वो 7वें मनु है। इससे पहले 6 मनु जा चुके हैं और उसके बाद और 7 मनु है। तो स्वयं मनु के समय ब्रह्मा जी के द्वितीय प्रारब्ध में सत्ययुग की प्रथमार्ध यानी शुरुआत में भगवान नील माधव जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए थे सत्ययुग में। तो उस समय भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। उस समय से ये स्वयंभू मनु के समय से स्नान यात्रा हुआ था। कहीं कहीं पे स्कंद पुराण में वर्णन आता है जो सेकंड मनु है सर्वोच्च मनु स्वरचिसा मनु, ये स्वरचिसा मनु के समय से रथ यात्रा का शुरुआत हुआ था। जब हम 7 दिन का कथा करेंगे उस समय बताएंगे कि असलियत में इस रथ यात्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ था और किस प्रकार से इसके पीछे पूरे सिद्धांत भरा पड़ा हुआ है और इतिहास से भी लेके बताएंगे। तो स्वयंभू मनु के समय से ये जो स्नान यात्रा का पालन करते हैं संसार में, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा पालन होता है। तो ब्रह्मा जी के द्वितीय प्रारब्ध स्वयंभू मनु की समय सत्ययुग की ये कथा है। उस समय मालव देश करके एक देश था, उस देश में अवंती नामक एक नगर यानी सिटी था। उस अवंती नगर को अमरावती कहते थे, धराधाम की अमरावती। अमरावती का अर्थ होता है स्वर्ग या इंद्र की भुवन अमरावती। अवंती को अमरावती इसीलिए कहते थे कि जिस प्रकार से इंद्र की भवन में या इंद्र के राज्य में जितना ऐश्वर्य है उसी प्रकार का ऐश्वर्य ये अवंती नगर में हुआ करता था, इसीलिए उसको इस धरा भूपृष्ठ का अमरावती कहते हैं। उस अमरावती में उस अवंती राज अवंती नगर में एक राजा निवास करते थे जो कि अपना प्रजाओं का पालन पोषण करते थे। उस राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। ये इंद्रद्युम्न राजा मालव देश के निवास करने वाले हैं और एक ऊंचे कोटि के वैष्णव है। और इस राजा की पत्नी का नाम था गुंडीचा। ये दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के दोनों पति पत्नी वैष्णव थे और इनके आराध्य देव थे विष्णु। एक दिन राजा अपने सारे नित्य कर्मों को करने के बाद उन्होंने अपने राजसभा में आकर बैठे, तभी ही भगवान का पूजा अर्चना करके वो आए थे। इन राजा के बारे में स्कंद पुराण में इस प्रकार से वर्णन आता है, असित कृत योगे विप्र इंद्रद्युम्न महानृपः सूर्य वंशे स धर्मात्मा सृष्टु पंचम पुरुषः। ऐसे कहा गया है कि असित कृत युगे, कृत युगे मतलब सतयुग में, भागवतम का श्लोक मालूम है ना, कृते ध्यायतो विष्णु, कृते मतलब सतयुग, कृते मतलब सतयुग, असित माने है, कृत युगे मतलब सतयुग में। विप्रहा इंद्रद्युम्न महाराज, विप्रहा मतलब हे ब्राह्मण गण, ये हे ब्राह्मण गण पे संबोधित किया जा रहा है जैमिन ऋषि के द्वारा अपने शिष्यों को या उनके सामने बैठकर सुनने वाले विप्रों को, ब्राह्मणों को जैमिन ऋषि ने संबोधन कर रहे हैं कि हे विप्रगण, सतयुग में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न, वो सूर्य वंश के थे और बहुत बड़े धर्मात्मा थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। और उनके बहुत सारे वर्णन किया गया कि किस प्रकार से एक राज ऋषि थे। राज ऋषि का अर्थ होता है जो राजा अपने राज्य के कारवारों को संभालते हुए भी वो भगवान से संपूर्ण शरणागत हैं। जिस प्रकार से जनक महाराज इत्यादि ये राजा होते हुए भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, इस प्रकार की राजाओं को राज ऋषि कहा जाता है। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज एक राज ऋषि थे, राजा होते हुए भी वो भगवान की भक्ति का हरेक अंगों को वो पालन करते थे। उन्होंने अपने विग्रह भगवान का पूजा अर्चना करने के बाद राजसभा में आकर बैठे और उस समय उनके मन में एक प्रकार का इच्छा जागृत हुआ इंद्रद्युम्न महाराज के मन में। वो किस प्रकार से इच्छा था, वो कहने लगे कि क्या ऐसा हो सकता है मैं इसी चर्म चक्षु के द्वारा भगवान की सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते करते उनके अंदर एक प्रकार की आतुरता उद्विग्नता पैदा हुआ कि मैं कब इन्हीं चक्षुओं के द्वारा इसी शरीर में रहते हुए इन्हीं चर्म चक्षुओं के द्वारा भगवान की श्री विग्रह का दर्शन करूं, इस प्रकार का इच्छा होने हुआ ये इंद्रद्युम्न महाराज को। तो उन्होंने आकर पूछने लगे, यत्र साक्षात जगन्नाथं पश्यमेतेन चक्षुषा, मैं इसी चक्षु के द्वारा, चक्षुषा इसी चर्म चक्षु के द्वारा क्या मैं जगत के नाथ जो कि जगन्नाथ है, परम पुरुष भगवान है, उनका दर्शन कर सकता हूं, इस प्रकार से अपने राजसभा में पूछने लगे। इस प्रकार के प्रश्न को देख के सभी लोग आश्चर्य रह गए और किसी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आज तक कभी तो इस प्रकार से वर्णन नहीं हुआ कि जहां तक शास्त्रों को सुने हैं लोग कि जानते हैं दिव्य चक्षु के द्वारा, प्रेम चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा भगवान से ब्रह्म, भगवान या ब्रह्म का दर्शन की जाती है, मगर राजा का वांटिंग है कि वो इस चर्म चक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। हम लोग भी सुने हैं कि देखते हैं भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं और मुझे दर्शन करो। ब्रह्म संहिता में हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, प्रेमान जनस्फुरित भक्ति विलोचनेन संथ सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सारे संत लोग प्रेमान जन से पूरित चक्षु के द्वारा भगवान को दर्शन कर पाते हैं, मगर ये राजा का इच्छा है कि वो इंद्रद्युम्न राजा को इसी चर्म चक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। ये राजा का इच्छा है। उस समय उनके राज दरबार में एक परिव्राजक सन्यासी या संत या साधु पुरुष लोग उपस्थित थे। उसमें एक साधु पुरुष तुरंत ही इस राजा के प्रश्नों का जवाब देने के लिए वो कहने लगे कि हे राजा, मैंने पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण किया हूं, अनेकों तीर्थ स्थानों का, तीर्थ स्थलों का मैंने दर्शन करते हुए आया हूं। उससे में मैंने एक बहुत अच्छा जगह देखा, उड्र देश इति ख्याते वर्षे भारत संघ के दक्षिण अस्योत तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम। मैंने एक पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन किया। कैसा पुरुषोत्तम क्षेत्र है? दक्षिण महोदधिस तीरे, ये दक्षिण में है और महोदधि मतलब समुन्द्र के किनारे पे है। महोदधिस तीरे, तीरे मतलब किनारे पे। क्षेत्रम पुरुषोत्तम, ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। और ये कहां पे पाया जाता है? उड्र देश है। मैं पहले बताया था कि अभी जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा का नाम पहले था उत्कल, और उत्कल से पहले उस देश का नाम था, उस राज्य का नाम था उड्र देश। इसीलिए स्कंद पुराण में उसका नाम ऐसा उड्र देश करके पाया जाता है। उड्र देश है, उड्र देश में इति ख्याते, इस प्रकार से कहा जाता है या विख्यात है भारतवर्ष में जो उड्र देश है। दक्षिणात्य महोदधिस तीरे क्षेत्रम पुरुषोत्तम, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंखचक्र गदाधर यंतुनम दर्शनान मुक्ति या ददाति कृपानिधि। वो जगन्नाथ जी उस धराधाम में, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनका दर्शन करने मात्र से ही जीव का मुक्ति हो जाता है। और केवल मनुष्य ही नहीं, अगर कोई पशु पक्षी भी उनका दर्शन करते हैं तो उनका भी मुक्ति हो जाता है। जंतुनाम दर्शनान मुक्ति यो ददादि कृपा निधि, ये इस प्रकार से कृपा निधि है वो जगन्नाथ। उनका निवास स्थान कहाँ पे है? उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में है। यत्र साक्षात जगन्नाथ, वो साक्षात जगन्नाथ है, इस जगत के नाथ है, ईश्वर है। और किस प्रकार से विराजमान है? शंख चक्र गदाधर, और शंख चक्र गदा के साथ वो वहां पे विराजमान है। इस प्रकार से उन्होंने, साधु पुरुष ने इस राजा को इन नीलमाधव या इस भगवान का बारे में, पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताया। जैसे ही राजा इंद्रदुम्न ने इस साधु पुरुष से इन पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में श्रवण किए, तुरंत ही उनके अंदर की जो उद्विग्नता था वो अत्वरान्वित होने लगा। त्वरान्वित का अर्थ है और तीव्र होने लगा कि मैं कैसे, अभी तो पता नहीं था कि कहां मैं देख पाऊंगा जगन्नाथ जी को या इस भगवान को इसी चर्म चक्षु से, मगर अभी तो प्रमाण भी मिल गया कि है जगह, यहां पे निवास करते हैं और उन्हें इसी चक्षु के द्वारा हम देख सकते हैं। जैसे ही पता लगा तो उनके अंदर की जो तीव्रता है और बढ़ने लगा कि मैं अभी भगवान को दर्शन किए बिना नहीं रह सकता हूं। और उन्होंने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, अपने राज पुरोहितों को कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए। तो उनके इस प्रकार की उद्विग्नता को देखकर उनके राज विग्रह ने उनको सांत्वना दिए कि हे राजा, आप तो नृप्रश्रेष्ठ हैं और भगवान विष्णु के आप परम भक्त हैं, इसीलिए ही ये साधु पुरुष जो है भगवान विष्णु के द्वारा ही प्रेरित हुआ था कि आपको इनकी जानकारी देने के लिए। इसलिए आप निश्चिंत रही हैं, आपके इच्छा के अनुसार ही भगवान आपके मनोवांछा पूर्ण करेंगे और मैं तुरंत इस जगह का पता लगाकर वहां पर रहने की आपका व्यवस्था करवाता हूँ। इस प्रकार से राज पुरोहित और मंत्रियों ने भगवान राजा इंद्रदुम्न को आश्वासना दिए। और देखकर ये जो राज पुरोहित था, उन्होंने अपने घर में जाके अपने छोटे भाई को बोला। राज पुरोहित उनके जो कुल गुरु होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, असलत में हर एक राजा के लिए एक गुरु होना चाहिए जो कि राजा को सही मार्गदर्शन दे सके। आजकल के राजाओं के पास कुल गुरु नहीं है, इसीलिए सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो ये विप्र अपने घर में जाकर अपने छोटे भाई विद्यापति, उसका नाम था विद्यापति, ब्राह्मण का छोटा भाई, विद्यापति को आदेश दिए कि आप जाओ दक्षिण के ओर, वहां पे जाके ये उड्र देश में जाओ, वहां पे जगन्नाथ जी का निवास स्थान है भगवान का, और वहां पे देखो कहाँ पे जगन्नाथ जी का निवास स्थान है, और उसके आजू बाजू में कोई एक ऐसा जगह देखो जहां पे राजा जाके ठहर सकते हैं।
तो ये विद्यापति को आदेश मिला। ये विद्यापति इस प्रकार के आदेश को सुनकर अत्यंत आनंदित हुए और वो जगन्नाथ जी को ठाव करने के लिए यानी खोज निकालने के लिए वो निकल गए रथ लेकर। अभी विद्यापति का भाव देखिए, सत्युग का बात है, ये निश्चित है कि हर एक व्यक्ति विष्णु भक्ति होंगे, भगवान ही परम पुरुष करके सभी लोगों को मालूम है और उनका ही आराधना की जाती है। और ये कृते ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु का जो ध्यान योग किया कर क्या हुआ करता था सतयुग में, ये केवल विष्णु का ही हुआ करता था, ध्यायतो विष्णु। तो ये विद्यापति भी स्वभावतः भगवान विष्णु के भक्त थे। जैसे ही उनको आदेश मिला कि मुझे भगवान का दर्शन के लिए खोज के लिए जाना है, मतलब मुझे भगवान दर्शन देंगे, और ये सुनते ही उनके अंदर सारे भक्ति का लक्षण प्रकट होने लगे और भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने रथ में चढ़े और चलने लगे। और रथ में जाते जाते वो इस प्रकार से सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, अहो मे सफलम जन्म सुकल्या सर्वरी चमे द्रक्षामि यद् भगवतो मुख पद्म मघापहम। वो क्या सोच रहे हैं कि ओहो मेरा जन्म तो सफल हो गया है, जैसे ही रजनी जैसे ही रात बीत जाएगा सुबह होगा, मैं तब तक भगवान का दर्शन कर पाऊंगा इस चर्म नेत्र के द्वारा। तदम तमद्य नील शिखरी श्रृंखस्त विभ्रतम बपू संबंध हरणम साक्षात द्रक्षामि चक्रिणम। मैं साक्षात चक्रिणम, चक्र अस्ति जस्य पाणी, जिसके पाणी यानी हस्तो कर कमलों में चक्र निवास करते हैं, सुदर्शन निवास करते हैं, उनको चक्र पाणी कहते हैं। मैं उस चक्र पाणी का साक्षात चक्र पाणी विष्णु का दर्शन करूंगा, ये तो मेरा अहोभाग्य है। मैं कभी विचार भी नहीं किया था कि इस प्रकार मुझे इसी शरीर में रहते हुए भगवान का दर्शन मिलेगा। तो ये होते हैं भगवान के भक्त, दर्शन से पहले ही, दर्शन के आशा से या आभास मात्र से इतना आनंदित होते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए ये जो विद्यापति ने इस उड्र देश के और दाक्षिणात्य के और वो जो समुद्र के और निकल पड़े वहां पे, तो ये जगह किस प्रकार से था, समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा सा पर्वत था, उस पर्वत का नाम है नीलगिरी। नील मतलब ब्लू, गिरी मतलब हिल पर्वत, इसको अनेकों नाम से लोग जानते हैं, नीलगिरी, नीलाचल, नीलाद्री, नीलशैल, सबका एक ही अर्थ है। नील पर्वत का मतलब ब्लू कलर का पर्वत, नीलाचल नील युक्त अचल, अचल मतलब जो कभी चल प्रचलित नहीं होता, हिलता डुलता नहीं है, पर्वत कभी नहीं हिलता है, इसलिए उसको कहते हैं नीलाचल। अद्री मतलब पर्वत, इसलिए उसको कहते हैं नीलाद्री। इस प्रकार से शेषाद्री है ना, बहुत सारा अद्री मतलब पर्वत, शेषाद्री शेखर विभो तव सुप्रभातम, सुने ना ये शेषाद्री मतलब जहां पे वेंकटेश निवास करते हैं शेषाद्री, उस प्रकार से नीलाद्री में जगन्नाथ जी निवास करते हैं। उस समय नील माधव निवास करते थे नीलाद्री में। उस नीलाद्री क्षेत्र में पहुंचे, शंख चक्र गदा पद्म धारिण तदृश्य नरान अवरूय रथातुर्णम साष्टंग प्रणिपत्य च। इसका अर्थ है जैसे ही विद्यापति ने ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रवेश किए, वो तो धाम है और भगवान का धाम दिव्य होता है, जैसे ही इस धाम में प्रवेश किए उन्होंने वहां के लोगों को देखे और जितने भी लोगों को देखे उनको दो हाथ वाले कोई लोग नहीं दिख रहा था, सभी लोगों ने चार हाथ वाले दिख रहे थे और सारे लोगों के चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म दिखाई पड़ रहा था। वैकुंठ का वर्णन आप लोगों को मालूम रहेगा कि वैकुंठ में कोई भी दो हाथ वाले नहीं होते हैं, वो चतुर्भुज होते हैं, जैसे ही भगवान विष्णु की तरह, क्योंकि वहां पे स्वयं विष्णु निवास करते हैं तो ये वैकुंठ से अभिन्न है। तो वैकुंठ से अभिन्न होने के नाते क्योंकि ये शुद्ध भक्त हैं विद्यापति भगवान के, इसलिए उनको सारे जो लोग हैं धामवासी उनको
ये चतुर्भुज के रूप में दर्शन दिए, और इस प्रकार के दर्शन को पाकर विद्यापति तुरंत ही क्या किए, अवरुह्य रथातुर्णम, अवरुह्य मतलब उतर गए, रथातुर्णम रथ की ऊपर से, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो तदृश्य नरान, इन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लोगों को देख के अवरुह्य रथान अपने रथ से उतर गए, रथ के उतर के क्या किए, साष्टांग प्रणिपत्य च, रथ के उतर रथ से उतर कर उनको साष्टांग प्रणिपात मतलब प्रणाम भी किए। ये केवल शुद्ध भक्तों का ही दृष्टिकोण है। हम लोग कितने धाम में जाते हैं, हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, इतनी बार सुनते हैं कि धाम की महिमा, धाम की, धाम वासियों की महिमा, मगर कभी इस प्रकार हमें दिखा नहीं दिखा। और वही लोग दिखते हैं, वही कंक्रीट का जंगल दिखता है, वही जानवर दिखते हैं, और हमारे जैसे लोग दिखते हैं, हम जे हमारे जैसे ही समझते हैं उन लोगों को। मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी इस प्रकार से जो माया के द्वारा आच्छन्न हुआ हुआ है पर्दा, उस पर्दा शुद्ध भक्तों के सामने काम नहीं करता है। असली वैकुंठ, असली धाम जो है शुद्ध भक्तों के सामने वो प्रकाशित होता है। इसलिए जब कभी भी धाम या धाम वास करें या धाम को दर्शन करने के लिए जाएं, भक्तों के संग में जाएं और श्रवण के द्वारा दर्शन करें। हमारे चर्म चक्षु के द्वारा दर्शन असंभव है धाम का। तो वहां पे पहुंचते पहुंचते, उस पर्वत के नीचे पहुंचते पहुंचते घना जंगल हो चुका था, और इस घना जंगल में आगे नहीं बढ़े, उन्होंने सोचे कि आज तो शाम हो चुका, यहाँ पे ठहर जाता हूं और सुबह उठ के मेरा दूसरे दिन का यात्रा शुरू करूंगा। इस प्रकार से सोच के वहां पे कुछ कुछ बिछा कर वहां पे वो विश्राम करने लगे। वो विश्राम करते समय उस पर्वत के निकट में से कुछ उजाला दिखाई पड़ा और कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, और उन्हें पता लगा कि ये जो है कुछ लोग बैठकर भगवान हरि की कथाओं का गुण कीर्तन कर रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे से विद्यापति उन हरि कथाओं को श्रवण करने के लिए उन लोगों के पास पहुंचे। जैसे ही उन जंगल में रहने वाले लोगों का हरि कथाओं को श्रवण करने के लिए विद्यापति उनके पास पहुंचे, उस वहां श्रवण करते करने के थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध व्यक्ति आए जो कि सबर जाति के मुखिया जैसे लग रहे थे और थे भी। उनका नाम था विश्वा बसु, और उन्होंने आए और आकर विद्यापति को देखे। भले ही विद्यापति ब्राह्मण थे मगर उन्होंने राज वेश में थे, क्योंकि राजा के दूत हैं। तो इस राज वेश को देख के सारे लोग आश्चर्य हो गए उनको देखकर, और ये विश्वा बसु जो है उन्हें पूछने लगे, क्या पूछे, अरे आप एक विप्र जैसे दिख रहे हो और इस प्रकार का इस घना जंगल में क्या कर रहे हैं, कुत समागतो विप्र काननंत सुदुस्तरम क्षुत त्रुट परित शांतश्च सुखमात्रश्च चिरम। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, आपने इस घना जंगल में, दुस्तर जंगल में कैसे पधारे? जो भी हो आप तो क्षुधा दिखाई पड़ रहे हैं, प्यासा लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं, क्या कृपा करके कुछ दिनों के लिए आप हमारे यहाँ ठहर सकते हैं? ये होता है अतिथि सत्कार। विश्वा बसु को पहले से लेटर नहीं मिला था कि इंद्रदुम्न महाराज के घर से आए थे करके, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। अतिथि का अर्थ होता है जो तिथि के बिना पहुंचते हैं, बिना इन्फॉर्मेशन का पहुंचते हैं, या जिनको बिन बुलाए मेहमान कहते हैं, वो है अतिथि। और उनकी सत्कार के बारे में शास्त्रों में वर्णन की गई है। तो तुरंत ही विश्वा बसु सबर जाति के होने पर भी, क्योंकि वो भगवान नीलमाधव का भक्त थे, वैष्णव थे, तो उनके अंदर सारे देवताओं के गुण, यस्यास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणस्तत्र समासते सुरा। जब भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर सारे देवताओं के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि विश्वा बसु जब भगवान के भक्त थे इसलिए उनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते थे। और जैसे ही विद्यापति को देखे उन्होंने तुरंत पूछे कि आप कहाँ से आए विप्रवर, आप तो थके हुए लग रहे हैं और आप तो क्षुधार्थ भी हैं, त्रिषार्थ भी हैं, क्या आप कृपा करके हमारे यहाँ कुछ दिन रुक सकते हैं?
ये सत्कार होता है। पाद्यमासनम मार्गंच दत्वा विश्वा वसुर्दिजम वाच प्रयस गीरा प्रसुत्यं प्रतिपादयन फलै पाक पाके नवाभिप्र प्राण प्राण यात्रा भवेत तब यत्तुभ्यं रोचते विप्र मया तद्वैव प्रदीयते। मैं ये जो भी संस्कृत के श्लोकों को पढ़ रहा हूँ ये सब कुछ स्कंद पुराण से है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम अतिथि सत्कार में आता है कि उस अतिथि का चरणों को धौत करना चाहिए, चरणाभिषेक करना चाहिए, उस व्यक्ति का चरण धोना चाहिए। ये भगवान कृष्ण भी अपने आचरण में करके दिखाए। जब द्वारका में निवास करते थे भगवान, उनके घर में नारद मुनि पधारे थे और उनका दोस्त या उनका मित्र सुदामा पधारे थे। इन सारे आचरणों में से भी भगवान भी सिखाते हैं कि अतिथि का पहले चरण धोत करना चाहिए। इस प्रकार से विश्वावसु भी चरण धोत किए, उनको आसन दिए, अर्घ्य दिए और इस प्रकार से कुछ फल इत्यादियों को फले ही पाके न उनको भोजन के लिए देने के बाद अत्यंत नम्रता पूर्वक उनको प्रश्न किया कि हे विप्र, आपका इस प्रकार की जंगल में आने का क्या कारण हो सकता है, क्या मैं किस प्रकार का आपका सेवा कर सकता हूँ, इस प्रकार का विनम्र निवेदन करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न सुनकर और विश्वावसु का इस आतिथ्य सत्कार, अतिथि सत्कार में अत्यंत प्रसन्न हुए विश्वावसु विद्यापति, और प्रसन्न होने के बाद वो विश्वावसु को जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हे साधु, मैं राजा इंद्रद्युम्न की प्रजा हूं या उनका राज दरबार का पुरोहित हूं। मुझे राजा इंद्रद्युम्न ने प्रेरित किए हैं कि यही उड्र देश में या नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत एक स्थान में स्वयं भगवान उपस्थित हैं, विराजमान हैं। मैं उनका ठाव करने के लिए यानी ढूंढने के लिए आया हूँ। उनका दर्शन मिलते ही मैं जाके राजा को इस खबर दूंगा, ताकि राजा का इच्छा है कि इस चर्म चक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और ये मेरा लक्ष्य है इस यात्रा का। जिस प्रकार से इस बात को सुने, इस बात को सुनते ही जो विश्वावसु के अंदर एक प्रकार का भय और दुख उत्पन्न हुआ, क्योंकि अभी तक विश्वावसु अत्यंत गोपनीय भाव से भगवान नीलमाधव का पूजा अर्चना किया करते थे। जैसे ही सुने कि राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा, राजा के द्वारा प्रेरित व्यक्ति हैं, उनको पता लगा कि अभी भगवान जो है मेरे से सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, आगे से राजा से सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। दुखी होने के बाद भी, क्योंकि उनको कुछ पहले की कथाओं को ज्ञान था, इस विश्वावसु को कुछ लोक कथाएं हुआ करता था, उनके वहां की किंवदंतियां, उसमें यह प्रचलित था कि ये जो नील माधव है कुछ दिनों तक ही सबर लोगों से, हम लोगों से सेवा पूजा पाएंगे, मगर कुछ दिनों के बाद एक इंद्रद्युम्न राजा करके वो आएंगे, उनके हाथ से भगवान नीलमाधव सेवा पूजा स्वीकार करेंगे, मगर वो भी नीलमाधव के रूप में नहीं रहेंगे, ये अंतर्ध्यान हो जाएंगे। अंतर्ध्यान होने के बाद चार विग्रहों के रूप में प्रकट होंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होंगे और इन चार विग्रहों को राजा इंद्रद्युम्न पूजा करेंगे। ये बात पहले से विश्वावसु को मालूम था, क्योंकि पहले से सत्य मालूम था, इसलिए वो अपने आप को स्थिर रखे और स्थिर रखते हुए ये विद्यापति को क्या किए, नीलमाधव का दर्शन के लिए आमंत्रित किए। इस प्रकार से सब सुने, विश्वावसु ने बताया कि हाँ हे विद्यापति, हे ब्राह्मण, मैं पहले से सुना था कि ऐसा ही होने वाला है, कि मैं सुना था कि कोई एक राजा है इंद्रद्युम्न, उसने आएगा और उसने आके मेरे नीलमाधव को, नीलमाधव अंतर्ध्यान हो जाएंगे, जगन्नाथ जी के रूप में आएंगे और वो पूजा करेंगे, इसलिए चलिए मैं आपको नीलमाधव का दर्शन कराता हूँ। ये सोचकर उन्होंने ये विद्यापति को लेके गए नीलमाधव का दर्शन के लिए। मगर आप लोगों ने कहीं कहीं कभी कभी एक अलग तरीके की कथा भी सुने होंगे कि विद्यापति ने, विश्वावसु ने सीधा नहीं माना था कि उनको दर्शन करवाने के लिए, और वो कथा इस प्रकार से था कि ये विद्यापति जाएंगे,
और उनके घर में कुछ दिन रुकेंगे और उनके उनका उनका बेटी था ललिता करके, उस ललिता के साथ इनका प्रेम होगा और दोनों का विवाह होगा। फिर ललिता को बोलेंगे कि अपना पिताजी को मनाओ, मुझे दर्शन करवाएंगे। तो ये बहुत सारा कथा है। तो असलियत में स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है, ये लोक कथा के अनुसार ये इस प्रकार से प्रचलित हुआ है। लोक कथा के अनुसार स्कंद पुराण में वर्णन नहीं आता है। कुछ ऐसे कथाएं हैं जो कि लोगों में ऐसे फैल जाता है कि लोग उसको ऐसे पकड़ के बैठते हैं और उसको ही निराट सत्य करके मान लेते हैं। और कुछ वो उस समय के उड़ीसा के एक कवि हुआ करते थे, उन लोगों ने ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत किए थे, उनके पुराणों से लोगों ने सुने और उसको पकड़ के बैठे। हाँ, ऐसे मैंने एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ बताया गया है जगन्नाथ जी के ऐसे बहुत सारे चरित्रों के बारे में। उन्होंने इस प्रकार से अपना मनोकाल्पनिक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। एक हमारे उड़ीसा में, हमारे उड़ीसा मतलब मैं उड़ीसा से हूँ इसलिए हमारा उड़ीसा कह दिया गलती से, उड़ीसा में एक कवि थे जो कविता लिखे हैं, वो सारला दास करके, वो आदि कवि माने जाते हैं। आदि कवि मतलब शुरुआत किए थे उन्होंने ये कविता लिखना, और उन्होंने ट्रांसलेट किए थे, फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ महाभारत संस्कृत टू हिंदी, संस्कृत से उड़िया को उन्होंने महाभारत ट्रांसलेट किए थे। उन्होंने ऐसे कई कहानी कई कहानियां भर दिए हैं जो कि व्यास देव जी के कथाओं को एक से खंडन कर रहा है। उन्होंने उसमें ऐसा लिखा है कि उनका हिम्मत तो देखिए उस व्यक्ति का, सारला दास का, उसने ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण इस शरीर को छोड़े जैसे मनुष्य लोग छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद उनका शरीर जो है जला नहीं जलने पर थोड़ा सा बच गया, बच जाने पर उसको फेंक दिए समुन्द्र में, और ये तैरते हुए आया था वो जगन्नाथपुरी के पास और उसको लेके जगन्नाथ जी के अंदर रखा गया है, इस प्रकार से उसने लिखा। और तभी से लोग भी ऐसा ही सोचने लगे, ऐसा ही मानने लग गए, जहां तक कि भगवान का शरीर हमारे जैसे इस पंच तत्व से बना हुआ नहीं है, वो सच्चिदानंद है। और उनका आविर्भाव अप्रकट कैसे होता है, स्वयं अपने स्वरूप से आते हैं और चले भी जाते हैं, मगर ये बात उसको नहीं मालूम था। उसने इस प्रकार की तथ्यों को दिया और उन्हीं तथ्यों को मानते हुए लोग चलने लगे। इस प्रकार से ऐसे कुछ लोक कथाएं हैं जो कि कई कई जगहों पर प्रचलित हो जाते हैं तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये भी इसमें से जो कथा है इस प्रकार से प्रचलित हुआ है। तो विद्यापति को अभी विश्वावसु ने लेके जा रहे हैं भगवान नीलमाधव का दर्शन करवाने के लिए। इत्युक्ता तम करे धित्वा वर्तमना गहनम जजौ उपर्युपर्युपारुह्य शिला विषम वर्तमनि। वो कहते हैं इत्युक्ता तम करे धृत्वा, इस प्रकार बोलने के बाद करे दत्वा उनके कर को, उनके हाथ को पकड़कर गहन जो गहन मतलब घने जंगल के अंदर घुसने लगे। और इस घने जंगल के अंदर की रास्ता अत्यंत संकीर्ण यानी छोटा था, जैसे कि एक ही व्यक्ति जा सकता है। और शिला विषम वर्तमनी मतलब ये पत्थर कंकड़ों के द्वारा एकदम से रफ रास्ता था, जैसे कि चल के जाने में सुविधा नहीं थी, इस प्रकार से रास्ते से वो जाने लगे। और जैसे ही पहुंच गए उस नील पर्वत पर, नीलकंदर पर, और वहां पे क्या क्या था, भगवान नीलमाधव जहां पे निवास करते हैं वहां पे एक कुंड था, उस कुंड का नाम है रोहिणी कुंड। और उस रोहिणी कुंड के किनारे पे एक बहुत बड़ा सा वृक्ष था जो कि कल्प वृक्ष है। तो जाके कहते हैं ए तो योरंतरे ब्राह्मण निकुंजाभ्यंतर स्थितम पश्य साक्षात जगन्नाथं वेदांत प्रतिपादितम, कि हे ब्राह्मण आप इस जगन्नाथ जी का दर्शन करो। इस रोहिणी कुंड कल्पवट के निकुंज में, यानी निकुंज मतलब कुछ झाड़ियों के छांव में या झाड़ियों के नीचे, उसको निकुंज कहते हैं। इस कल्प वृक्ष के निकुंज में, रोहिणी कुंड के किनारे में जो जगन्नाथ जी निवास करते हैं, जगत के नाथ जो कि नीलमाधव के रूप में, आप उनका दर्शन करो और दर्शन करके सारे पापों से मुक्त हो जाओ, इस प्रकार से विश्वावसु कहने लगे। ये सुनते ही उन्होंने विद्यापति ने जैसे ही भगवान इस रोहिणी कुंड का दर्शन किए, कल्पवट का दर्शन किए और जैसे ही नीलमाधव का दर्शन किए, अत्यंत सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किए बारंबार भगवान का और उनके अंदर सारे भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे, प्रेम के लक्षण, और उन्होंने प्रार्थना करने लगे भगवान को, नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलानन, नमः कमल प्रत्याक्ष, त्राहि माम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, मेरा उद्धार करिए, मुझे उद्धार करिए इस भवसागर से। आप कमल कमलाकांत, आप लक्ष्मी के पति है, कमल लोचन, आपके नयन कमलों के जैसा है, आप पुरुषोत्तम है, मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, आप कृपा करके मुझे रक्षा कीजिए। इस प्रकार से विप्र जो है, इति सुत्वा सुरेशानं देवं प्रवण विप्रणाम प्रणतः प्रवणम मंत्रम जचा जपाप पुरुत हरे। इस प्रकार से भगवान नीलमाधव का प्रार्थना करने लगे और प्रणाम करने लगे विद्यापति बारंबार। इस प्रकार से प्रार्थना किए, थोड़ी देर वहां पे जगन्नाथ जी का दर्शन किए, दर्शन करने के बाद उन्होंने वहां से विद्यापति के विश्वावसु के साथ फिर से अपने विश्वावसु के घर में वापस आए। कुछ दिन तक विश्वावसु के घर में निवास किए। निवास करने के बाद विश्वावसु के साथ उनका बहुत अच्छा सा मित्रता स्थापन हुआ और उन्होंने कहने लगे कि हे विश्वावसु, अभी मेरा जो मकसद है वो अभी तो पूरा हुआ, अभी मुझे चाहिए कि मालव देश में वापस जाके इंद्रद्युम्न महाराज को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि राजा आके भगवान का दर्शन कर सके। यह सोचकर जो विद्यापति थे उन्होंने मालव देश के और अवंती के और निकले, मगर वो निकलने से पहले फिर से एक बार जाके ये नीलमाधव का दर्शन किए और वहां से भगवान का कुछ पुष्प हार प्रसाद के रूप में लेकर उन्होंने निकले राजा इंद्रदुम्न का दर्शन के लिए। और जिस दिन ये नीलमाधव का दर्शन करके निकले उस दिन शाम को क्या हुआ मालूम है, एक अत्यंत दुखद घटना घटित हुआ। जैसे ही उन्होंने उस जगह से निकल गए उड्रदेश से मालव की ओर, उस समय शाम को सारे देवी देवता लोग आए थे पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान नीलमाधव निवास करते हैं, ये विश्वावसु के साथ साथ सारे देवी देवता लोग भी भगवान नीलमाधव का पूजा करने के लिए वहां पे आते थे। रोजाना वो अपना स्वर्ग के फूल लाया करते थे, स्वर्ग के चंदन, स्वर्ग के धूप, स्वर्ग के सारे पूजा के सामग्रियां लाकर भगवान नीलमाधव का वहां पे पूजा करते थे। और जैसे ही गए ये विद्यापति चले गए, उस दिन संध्या काल हुआ, संध्या के समय संध्या आरती भगवान का होने वाला था, सारे देवी देवता लोग उपस्थित हैं और पूजा शुरू ही होने वाला है, एकदम से जोर से तूफान आने लगा। और जोर से तूफान आया और जोर जोर से हवा बहने लगा और जितने भी समुद्र के किनारे की रेती हैं, उसको कहा जाता है सुवर्ण रेती, सोने का वो बालू है, ये सारे बालू एकदम से उड़ते उड़ते गए और वो पूरा धीरे धीरे से भरने लगे और नीलमाधव जो है इस बालू के अंदर से वो अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर्ध्यान हुए सारे देवता लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर आंख खोल के देखें तो नीलमाधव वहां पे दर्शन नहीं दे रहे हैं। प्रत्यागते ततो विप्र संध्या सायन्ये सुर संकुले माधवार्चन बेलायम बातश्चंड गतिर बबो। प्रत्यागते ततो विप्र, प्रत्यागते मतलब प्रत्यावर्तन करने के बाद यानी लौटने के बाद, विप्र यानी वो ब्राह्मण विद्यापति, सायन्ये मतलब संध्या समय में, माधवार्चन बेलायम, माधवार्चन यानी भगवान माधव की अर्चन की बेल में यानी संध्या आरती का समय पर, बातश्च यानी जोर से हवा बहने लगा और रेती के द्वारा पूरा ढक गए नीलमाधव, ढक गए और अंतर ध्यान हो गए। और ये अंतर ध्यान को देखकर ये जितने भी देवी देवता वो जोर जोर से भगवान को बुलाने लगे कि हे भगवान आप कहाँ चले गए, आप हमारे आंखों के सामने के इस प्रकार से क्यों अप्रकट हो गए, क्या हमने किसी जन्म में कुछ पाप किया था तो हमको अभी इस प्रकार से देव और देवता के शरीर में या देव लोक में रहने की कोई महत्व ही नहीं रह गया, इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। अपराध किमस्माकं लक्षितः पुरुषोत्तम
युगपत सेवकान सीमन पापा पहायन दृश्यसे दिविस्तानेश्च किं कार्यं तामना लोक्य माधव आकृतार्थ स्वयाहीना भविष्यामो बने चरहा।
देवता लोग कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आप इस प्रकार से हमारे सामने से अप्रकट हो गए। कुछ लोग करें कि हे भगवान, हमें इस सुर शरीर मतलब ये देवता की शरीर की कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे अभी देवलोक में रहना ही नहीं है, हम सब भविष्य में बने चराहा, हम लोग सारे वन में चले जाएंगे, हमारा देव कार्य की देव देवस्थान की या देव इंद्र की भवन की या स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं रह गया, महत्व नहीं रह गया। इस प्रकार से सारे लोग विरह में भगवान के विरह में क्रंदन करने लगे। जिस प्रकार से यहाँ पे एक श्लोक को कोट की जा रहा है गीत गोविंद का, निंदति चंदनम मिकुंद किरणम मनोबिंदति खेदम अधीरम व्याल निलय मिलनने न गरण मिबम कलयति मलय समीरम सा विरहे तव दीना माधव मन शिव विषक भयादिव भयानया तोइला लीना। श्री राधा चंदन को और चंदन की किरण को निंदा कर रही है, और शीतल जो कि अत्यंत शीतल है मगर वो सोच रही कि ये चंदन और ये भगवान ये चंद्र की जो किरणें हैं उनको एकदम से आग जैसा लग रहा है, और मलय का जो पवन है मलय पर्वत से आने वाला पवन, ये पवन उनको ऐसा लग रहा है कि सांप की मुख से निकला हुआ हवा है, जहर जैसा लग रहा था। मतलब ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान की विरह इस प्रकार से भक्त के ऊपर प्रतीत होता है, जिस प्रकार से देवता लोग आलाप कर रहे हैं कि भगवान के विलाप में, उसी प्रकार से ये वर्णन आता है कि जब भी श्रीमती राधा रानी भगवान की विरह में इस प्रकार से सोच रही कि उनको चंदन जो कि अत्यंत ठंडक पहुंचाता है शरीर को, वो एकदम से ज्वाला ज्वलन कर रहा था शरीर को, जो कि चांद का किरण चांदनी वो ठंडक पहुंचाता है शरीर को, मगर वो भी उनको जलने जैसा, जैसे लग रहा है कि धूप है, कड़ी धूप है। मलय पवन जो कि अत्यंत मृदु मृदु बहता है, जो कि अत्यंत शीतल हवा लगता है, मगर वो भी कैसा लग रहा था, जैसे कि सांप के मुंह से या सांप की नाक से निकला हुआ जहर की सांस हो, इस प्रकार से परिदृत है। जब भगवान की विरह में भक्त लोग इस प्रकार से विरह का अनुभव करते हैं, इस प्रकार से सारे देवता लोग आलाप तो करने लगे मगर भगवान प्रकट नहीं हुए, अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि तब तक ब्रह्मा जी का प्रथम प्रारब्ध खत्म हो चुका था, यही संधि था घड़ी संधि की, अभी ब्रह्मा जी का प्रथम प्रारब्ध खत्म हुआ, द्वितीय प्रारब्ध शुरू हो रहा था, इसलिए निर्माधव अप्रकट हो गए, अभी कभी नहीं दिखाई देंगे वो, और वो जगन्नाथ जी बन जाएंगे। तो उस समय ये विद्यापति जो है मालव में पहुंचा राजा इंद्रद्युम्न के पास, राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचकर राजा विद्यापति को देखते ही अत्यंत खुशी हो गए, अत्यंत आनंद विभोर हो गए, और उनको प्रणाम करने लगे और उनका स्वागत किए, और स्वागत करके उनको सुकुशल वार्ता पूछने लगे। और पूछने के बाद विद्यापति ने भगवान का प्रसाद लेके गए थे, कैसा प्रसाद, भगवान का फूल हार लेके गए थे, और वो फूल हार देवताओं के द्वारा अर्पित किया हुआ था, तो ये फूल हार प्रसाद लेके राजा को पहनाए या राजा को भेंट दिए, और फूल हार को पाते ही राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए, और इस फूल हार पाते ही भगवान का स्तुति करने लगे। मालम मुकुंद शिरसो अनुप्रम प्रमाद लोभा धरी कृत सुरुद्रम कांत गंधाम अंधीकृता निचया पवन प्रसारी गंध प्रणाशित जगत कुल कलुषाम नमामि। मैं उस मुकुंद को नमस्कार करता हूँ या नतमस्तक होता हूँ जिनका अपरूप सौरभ और जिनका ये जो कमनीय कुसुम का सुगंध है, इन फूलों में इसीलिए आया क्योंकि ये सारे फूल भगवान की शरीर में सेवा किए हुए थे। इस प्रकार से उन्होंने अनेकों भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करने के बाद विद्यापति से उस नील बाधव के बारे में कथा श्रवण करते हैं, और विद्यापति ने सब कुछ बताया किस प्रकार से वो गए थे नील पर्वत के ऊपर, विश्वावसु मिला था, भगवान नील माधव का दर्शन किए, रोहिणी कुंड का दर्शन किए। भगवान नील माधव जो है उनका अजान लंबी तो भुजाओ चार चार था, लंबे लंबे चार भुजाएं थे, चारों भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। ये भगवान का पूरा श्री विग्रह एक नीलमणि से बना हुआ था, नीलमणि से बना होने के कारण अत्यंत चमक रहा था और ये पूरा जगह को वो एकदम से रोशनी प्रदान कर रहा था। रोजाना सारे देवता लोग आके भगवान का यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। भगवान का ये रूप जो है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ सा, करोड़ों कंदर्पों को भी जीतने जैसे लग रहा था। उनके वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहा था, उनके कटिदेश में पीतांबर यानी पीत वस्त्र जो है सुशोभायमान हो रहा था, अनेकों वन की पुष्पहार और अनेकों देवताओं द्वारा नंदन कानन से लाया गया हारों के द्वारा भगवान सुशोभित हो रहे थे। अनेकों रत्न इत्यादि मणियों से भरा हुआ रत्नों को अलंकारों को भगवान परिध्यान करे किए थे और इस प्रकार से भगवान की सुंदरता, इस भगवान की धाम की सुंदरता को कहीं समय बहुत देर तक जो है विद्यापति वर्णन करने लगे किसको, विश्वावसु को। इस प्रकार से वर्णन करने के बाद इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो तुरंत ही क्या सोचने लगे, अभी मुझे जाना चाहिए दर्शन के लिए भगवान का। इसी समय ये विद्यापति का और ये विश्वावसु का वार्तालाप चलते समय और एक कथा ऐसा हुआ कि जो हमारे परिव्राजक आचार्य, श्रेष्ठ परिव्राजक आचार्य नारद मुनि, उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज के राज दरबार पर पधारे। वो तो मनयान में चलने वाले, कभी भी कहीं पे भी वो आके हाजिर हो जाते हैं। तो उन्होंने ये दोनों राजा और विप्र के बीच में बात चलते समय आके पहुंचे और उन्होंने पहुंचने के बाद राजा ने उनको प्रणाम किए। उनको प्रणाम करने के बाद वो राजा कहने लगे कि अहो, आज तो मेरे जितने भी जन्मों का पाप था वो सब कुछ सारे पाप नष्ट हो गया और मैं कितने भी यज्ञ और दान तप इत्यादि किया था वो सबका फल मुझे आज मिला क्योंकि आज आप मेरे घर में पधारे हैं। कहते हैं अद्य मे सफलम यज्ञम दान अध्ययनम तपह जन्मे गृहम समागच्छत द्वितीया ब्राह्मणमस्तु। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, क्योंकि आज आप मेरे घर में पधारे हैं इसीलिए मैंने जितना भी यज्ञ किया हूँ, जितना भी दान दिया हूँ, जितना भी अध्ययन किया हूँ और जितना भी तप किया हूँ, ये सबका फल बचा हुआ था आज पूरा हो गया क्योंकि आप जैसे महान वैष्णव और ब्रह्मा जी के पुत्र जो है मेरे घर में प्रवेश किए या पधारे। उस प्रकार से उनको प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद उनको उन्होंने भगवान के भक्ति के बारे में प्रश्न किए। तो कहीं श्लोकों में, कहीं अध्यायों में भगवान नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न महाराज को कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं और ये कृष्ण भक्ति के बारे में बताते बताते नारद मुनि बताने लगे कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, आप चिंता मत करो और वो पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य भी बताएं। और राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे कि हमें वहां जाना है, तो राजा बोले कि आप चिंता मत करो, हम लोग पुरुषोत्तम धाम में जाएंगे और वहां पे निवास के लिए वहां पे निवास करेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। ये श्रवण करते ही राजा उस दिन शाम को, उस दिन कथा नारद मुनि के साथ कथा प्रांत में विश्राम किए। उस दिन था ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत पंचमी तिथि में नारद मुनि और ये राजा का बीच में बात हुआ और दोनों रात को विश्राम किए। सुबह उठते ही राजा ढिंडोरा पीटे अपने सैनिकों के द्वारा पूरे राज्य में, सारे राज्यवासी पैकिंग करो, सभी लोगों को जाना कहाँ है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में वहां पे निवास करना है और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। जैसे ही आदेश मिला सभी लोग अत्यंत खुश हो गए क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न जो है प्रजाओं को बहुत अच्छे तरह से अपने पुत्रों जैसा देखभाल करते थे, इसलिए सारे प्रजा उनके ऊपर इतना विश्वास था कि राजा के वचनों पर, और उन्होंने निकल गए पुरुषोत्तमपुरी की ओर यात्रा, पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा के लिए। सभी लोगों के साथ उन्होंने निकले। रास्ते में जाते समय नारद मुनि और राजा एक ही रथ में हुआ करते थे। उन्होंने नारद मुनि से अनेकों हरि कथाओं के बारे में श्रवण किए। श्रवण करते करते रास्ते में राजा को कुछ अवशकुन दिखाई पड़ा, जैसे होता है कुछ ये आंख या ये आंख कुछ, है ना, ऐसे कई अवशकुन, उल और क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, वो सब दिखाई पड़ा, ये सारा अवशक सब दिखाई पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जब अवशकुन दिखता है तभी कुछ ना कुछ अघटन हुआ रहता है। ऐसे भागवतम में कई वर्णन, पहला स्कंद में वर्णन आता है ना, जिस समय भगवान धराधाम छोड़ के चले गए वैकुंठ में, तभी युधिष्ठिर महाराज को कितने अवशकुन दिखाई पड़े थे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज पूछे, जब अर्जुन आके आए तो पूछने लगे कि ये सारा अवशकुन क्यों हो रहा है, वो भी चिंतित हो गए थे। ऐसे कई जगहों पर ये प्राप्त होता है। तो जैसे ही पूछे इंद्रद्युम्न महाराज, तभी नारद मुनि उन्हें समझाते, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, कहीं पे भी भगवान की साधना करते समय कुछ इस प्रकार के कष्ट आते ही हैं, मगर क्योंकि आप बहुत बड़े वैष्णव हो और ये वैष्णव को इन सारे छोटे मोटे कष्टों के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, ओ उत्साह निश्चयात धैर्यात इसमें अड़े रहना चाहिए, ताकि वो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से उनको आश्वासना दिए, आश्वासना देके उन्होंने आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते उड़ीसा में पहुंचे। उड़ीसा में पहुंचे तो उड़ीसा में एक नदी बहता है, उसको महानदी कहते हैं। उस महानदी के किनारे पे राजा मुनिवर नारद और सारे राज्यवासियों ने स्नान किए। स्नान करते करते वहां पे उड़ीसा का राजा आकर पहुंचे और उनका स्वागत किए उड़ीसा में। स्वागत करने के बाद, कुशल मंगल वार्ता होने के बाद, वो पूछे कि आपका राज्य कैसा चल रहा है। तो उड़ीसा का राजा कहने लग गए कि क्या बताऊं, दुख की बात कि हमारा राज्य में ये सारे अवशकुन दिखाई पड़ रहे हैं, और बहुत सबसे दुख की बात यह है कि भगवान अप्रकट हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, नीलमाधव जो कि नील पर्वत पर थे वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे इस बात को सुने इंद्रद्युम्न महाराज, वो एकदम से उन्होंने क्या हो गए, अंतर्ध्यान की बात जैसे ही सुने वो एकदम से दुख से विभोर हो गए और वो मूर्छित होकर वहां पे गिर गए। तत्सुत्वा घोर वचनम वज्रपात समम नुप पपात धरणी पृष्ठे निसंज्ञ स द्विजोत्तम। हे मुनियों ने सुनो, जिस समय इंद्रद्युम्न महाराज ने सुना कि ये जो नीलमाधव है अप्रकट हो चुके हैं, ये सुनने मात्र से ही क्या हुए, वज्रपात समान रूप, राजा को वज्रपात जैसे लगा। अगर मान लो किसी के ऊपर चड़क गिरता है तो कैसे प्रतीत होता है, व्यक्ति तुरंत ही अचानक मूर्छा जाता है या मृत्यु होता है। उस समय जैसे ही ये कर्ण रंध्र में ये शब्द पहुंचा कि नीलमाधव अप्रकट हो गए, और उसी समय जो कि धड़ाम से जो इंद्रद्युम्न महाराज धराधाम में धरा पृष्ठ में गिर गए। पपात धरणी पृष्ठे, धरणी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पपात पतित हो गए, गिर गए। संज्ञा नहीं है उनके शरीर में, एकदम से मूर्छित हो गए थे। कुछ देर के बाद नारद मुनि जो है इंद्रद्युम्न महाराज को फिर से जगाए। राजन पंडित मूर्धन्यो वैष्णव धैर्य सागर श्रेय संविघ्न सततम कथं मानवाधार्य जो पूरा करेंगे। इस प्रकार से अधैर्य नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, इस प्रकार से उनको समझाए। समझाने के बाद राजा उठे और वो अत्यंत रो रहे थे और वो पूछने लगे कि असलत में अभी क्या करना चाहिए मेरे को। नारद मुनि बताएं कि देखो जो भी हुआ, अभी हम चलो पहले हम ये पर्वत के ऊपर जाते हैं, वहां पे नीलकंठेश्वर करके मंदिर है शिव जी का, उस मंदिर के सामने एक बहुत अच्छा सा स्थान है उस मंदिर की पूर्वी दिशा में एक बहुत अच्छा सा स्थान है, और उस पूर्वी दिशा में एक नरसिंह देव का विग्रह है। उस नरसिंह देव के विग्रह को पूजा करते हुए हमें 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और ये अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करेंगे और फिर से इस धराधाम में प्रकट करवाएंगे। ये नारद मुनि बताए इंद्रद्युम्न महाराज का। तो इंद्रद्युम्न महाराज, नारद मुनि सभी लोगों ने वो चढ़ते चढ़ते उस पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। अभी जो है ना, मैं बाद में बता दूं, तो चढ़ने लगे। चढ़ने के बाद पर्वत के ऊपर चढ़े, चढ़ने के बाद वहां पे नरसिंह देव का विग्रह मिला, नरसिंह देव को प्रणाम किए और अश्वमेध यज्ञ का स्थापना किए। स्थापना करते ही जैसे ही नृसिंह देव का दर्शन हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज ने उनसे उन्हें प्रार्थना करते हैं, देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राही माम पुंडरी काक्ष पतितम भवसागरे। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए इंद्रद्युम्न महाराज ने अश्वमेध यज्ञ चालू किए, शुरुआत किए। मगर यह अश्वमेध यज्ञ कलियुग के लिए निषेध है।
कलियुग के लिए चार चीजें निषेध किया गया है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवर्णय सुतोत्पत्तिम कलोपंच, पांच चीज कलोपंच वर्जयत। अश्वमेध यज्ञ गोहत्या या गो गायों को यज्ञ में आहुति देना, संन्यास लेना, ये सारे पांच चीज जो है कलयुग में वर्जन किया गया। इसीलिए मगर वो जो समय कौन सा था, सतयुग था, और उस समय अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता था। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, पूरे अश्वमेध यज्ञ जब भी समाप्त हुआ, अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के दिन रात को इंद्रद्युम्न महाराज को एक सपना हुआ, और इस सपने में इंद्रद्युम्न महाराज वैकुंठ में गए थे या वैकुंठ का पूरा दर्शन किए, क्षीर सागर अनंत शेष के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए थे, अनेकों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रहे थे, ये पूरा दृश्य को उन्होंने दर्शन किए। और उठ के घबराते हुए नारद मुनि को जाके बोले कि मुनिवर, मैंने इस प्रकार से सपना देखा। तो ये सपना को देखते ही
नारद मुनि कहने लगे कि ये ब्रह्मा जी का जो वाक्य है वो सत्य हो रहा है, कि आपने जो भी तपस्या किया, जो भी यज्ञ किया, उसका फल आपको तुरंत ही मिलने वाला है, इसका जो है लक्षण अभी से पता चल रहा है। इसीलिए आपके ये जो भक्ति की बात है, तपस्या का जो फल है, ये किसी को बताना नहीं है।
एक उसका एक श्लोक आता है, हरि संबंधी अनुभूति अन्यत्र प्रकाशन, प्रकाशन हरि संबंधी अनुभूति, जो हमको भक्ति के द्वारा, अपने साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो कुछ अनुभूति हुआ है, वो कभी प्रकाशन नहीं करना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मैं भगवान का दर्शन करते करते मेरे आंखों से आंसू आ गया करके दूसरों को नहीं बताना चाहिए करके वहां बताया गया है। जो भी हमें अनुभूति होता है भक्ति के द्वारा या साधना के द्वारा, ये सब अपने पास और एक ही व्यक्ति है कि जो कि गुरुजी, उन्हें बताना चाहिए।
सोपि त्वया जगत स्रष्टा स्वप्ने सन्निध्य बलोकेतः तदनुष्ठीयतां यज्ञं पराग्रे न प्रकाशय,
पराग्रे मतलब दूसरों के सामने, अग्रे मतलब सामने, न प्रकाशयत, प्रकाश नहीं करना चाहिए कभी भी इस बात को, ऐसे कहने लगे। और इंद्रद्युम्न महाराज अत्यंत खुश थे। उसी समय एक खबर आया, उस समुद्र के किनारे एक जगह है, उस जगह को कहते हैं हाँ, उसको अभी चक्र तीर्थ के नाम में वो जगह विख्यात है, चक्र तीर्थ कहते हैं, और उस जगह को बांकी मुहाना कहते हैं। मुहाना मतलब जहां पे नदी और समुद्र इकट्ठा हुआ है, तो महानदी जहां पे समुद्र के साथ मिला है उसको मुहाना कहते हैं, और उसको उस जगह का नाम है बांकी, इसलिए उसको बांकी मुहाना नाम पड़ा। इस बांकी मुहाना की जगह से कुछ लोग राजा के पास आए और राजा को इन्फॉर्म किए कि हे राजा, हमने कुछ अद्भुत चीज देखा। ना क्या देखे, समुद्र में एक बहुत बड़े लकड़ियां तैर के आए हुए हैं, और इस लकड़ी का अग्रभाग जो है समुद्र में धसा हुआ है, और उसका जो मूल है, उसका जड़ है, वो तैर रहा है और हमारे तरफ से तैरते तैरते आया और किनारे में लग गया। ये सुनते ही राजा आश्चर्य हो गए, आश्चर्य होके नारद मुनि को पूछे। तो नारद मुनि ने एक बात बताते कि इसे, हे राजा चिंता मत करो, आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या किए थे या यज्ञ किए थे, वो अभी प्रकट हो गए हैं।
वो कहते हैं,
आपने सपने में जिन विष्णु या जिस नारायण का दर्शन किया, जिस वैकुंठ जगत का दर्शन किया, उस वैकुंठ नाथ का अंगों में से एक रोम वो जो है वो समुन्द्र में गिरा, और वो रोम तैरते हुए इस लकड़ी के रूप में अभी यहां तक विराजित हुआ है करके नारद मुनि का कहना है।
तदंग स्खलितम रोमम,
उनके अंग से स्खलित हुआ रोम, शरीर के एक लोम, तरुत्वम उपपद्यते, तरु मतलब लकड़ी के रूप में उपपद्यते, प्रकट हुआ, इस प्रकार से नारद मुनि बताते। तो ये जो दारू है, जो लकड़ी है, जगन्नाथ जी बनना है, वो क्या है, जब भगवान नारायण के शरीर से निकला हुआ एक रोम समुन्द्र में तैरते हुए वो लकड़ी बन के आया, और उससे दारू ब्रह्म बना।
हमको मालूम है भगवान जो है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति, वो
हरेक अंग से हरेक कार्य कर सकते हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और कोई असंभव की बात नहीं है उनके लिए, इसीलिए वो प्रकट हुए हैं।
प्रकट होने के बाद नारद मुनि को पूछे राजा कि कैसे करें, इस लकड़ी को कैसे लेंगे, और ये भगवान का विग्रह कैसे बनेगा,
ये पूछते समय एक आकाश से आवाज आया, शून्यवाणी आया और आकाशवाणी हुआ, आवाज आया कि हे राजा आप चिंता मत करो, देखो आपके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में बहुत सारा अस्त्र शस्त्र है, उस व्यक्ति को बुलाओ, वो व्यक्ति तुम्हें भगवान की विग्रह बना के देगा, मगर ध्यान रखो इन विग्रहों को लेकर एक कमरे के अंदर बंद करो और 15 दिन तक बंद रखना, 15 दिन तक खोलना मत, इस 15 दिन में ये बूढ़ा व्यक्ति इन विग्रहों को बना देगा, बाद में तुम उनका पूजा विधि करोगे। तो बोल के रख दिए, मगर हम लोगों ने दूसरे कथा में कैसा सुनते हैं कि ये 21 दिन तक बंद रखा था, 15 दिन में रानी के अनुरोध पर खोल दिए थे, तो वो लोक कथा में है, किंवदन में इस यहाँ पे ऐसा बनना, यहाँ पे ऐसा बनना है, सुगुप्तया महावेद्यं स्वयं सेवितरिष्यति प्रसाद्यात्यं विनोदात्य जावत पंचदशानि वै, 5 पंचदश यानी 15 दिन तक इसको कमरे को बंद रखो, और वहां पे जो वृद्ध शस्त्र पाणिस्त वर्धकी, जो बूढ़ा व्यक्ति हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके खड़ा है, उसको बुलाओ और ये बना देगा। तो राजा ने वैसे किए, एक कमरे में बंद कर दिए लकड़ियों को रख के, और बूढ़ा व्यक्ति को रखे, और उस बूढ़ा व्यक्ति ने उस कार्य को किए, मगर वहां पे और एक भी आदेश था कि क्या करना, उस जगह पर विभिन्न प्रकार की वाद्य यंत्र बजना चाहिए, जहां जिस घर में काम हो रहा है घर के सामने ढोल करताल मृदंग इत्यादि बजना चाहिए, नहीं तो ऐसे बताया गया है जो व्यक्ति ये काम को सुनेगा, ये कार्य करते हुए जो आवाज आ रहा है, उस आवाज जिस व्यक्ति के कान में जाएगा वो व्यक्ति बहरा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, हो सकता है उसको मृत्यु भी हो सकता है, इसीलिए उस घर के आजू बाजू में जोर जोर से ये मृदंग करताल इत्यादि बजना चाहिए, भजन होना चाहिए। तो वैसे किए, 15 दिन के बाद देखें जगन्नाथ जी का विग्रह बन चुका था, और जगन्नाथ जी का विग्रह बनने के बाद नारद मुनि ने ये जगन्नाथ जी का विग्रह इस प्रकार का रूप क्यों है, उन्होंने वो कथा बताएं जो कि हम जो 7 दिन की कथा में उस समय बताएंगे, इसको शुरुआत में कथा बताने के बाद अभी फिर से शून्यवाणी हुआ, फिर से आवाज आया आकाश से, अभी कैसे आकाश से आवाज आया कि हे राजा इसको 15 दिन तक फिर बंद रखना अल्टर के अंदर, और तब तक क्या करना, जो विश्वावसु सवर जाति का और विद्यापति है उनके संबंधियों को बुलाओ, उनके द्वारा इस विग्रह का पेंटिंग करवाओ, उनको चित्र विचित्र करवाओ, नहीं तो ये तो स्वयं परम ब्रह्म है ही सच्चिदानंद, मगर जो लोग इसका दर्शन करेंगे उनको लकड़ी जैसे दिखेगा, और लोग इसको अगर लकड़ी जैसा सोचने लगे तो अपराध होगा, घोर अपराध होगा, इसीलिए आप क्या करो इन विग्रहों को बहुत ही अच्छे से चित्र से चित्र विचित्र करो, और इसके लिए आप उन लोगों को बुलाओ जो विश्वावसु और विद्यापति के लोगों को बुलाओ जिन्होंने कि इनका चित्रों को करेंगे, और कैसे कलर करेंगे, किस विग्रह को कैसे कलर करना चाहिए, 4 विग्रह था जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का और सुदर्शन का, तो उसके बारे में भी वर्णन आता है। नीलाभ्र श्यामलम विष्णु, भगवान विष्णु को नीलाभ्र, अभ्र मतलब आकाश, नील मतलब नीला, नीला आकाश की कलर लगाना चाहिए, जैसे घना काला रंग, श्यामल रंग है वो। संखे संखेंदु धवलंग बलम, बलम मतलब बलदेव जी को, संखेंदु मतलब शंख जैसा, शंख का कलर कैसा है, सफेद है ना, तो संखेंदु धवलम यानी शंख जैसा कलर लगाना चाहिए, बलम, बलम मतलब बलदेव जी को। रक्तम सुदर्शनम चक्रम, और रक्त कलर, लाल कलर लगाना चाहिए एकदम से सुदर्शन जी को। सुभद्राम कुंकुमारुणानम, और सुभद्रा जी को कुंकुम का रंग लगाना चाहिए, कुंकुम समझते हैं ना, स्त्रियां यहाँ पे लगाते हैं माथे पे कुंकुम लगाते हैं, उस रंग होना चाहिए सुभद्रा मैया का करके। अरुण वर्ण, अरुण मतलब अरुण वो है जो सूर्य वो सुबह उगते हैं ना, जो कलर रहते हैं सुभद्रा मैया का वो कलर एकदम से येलो, येलो इस प्रकार से अरुण वर्ण होना करके बताए। बताने के बाद उस प्रकार से विग्रहों का हुआ फिर से, और उसी समय ये भी आवाज हुआ था कि हे राजा इन तीनों के लिए, चारों के लिए एक बहुत बड़ा सा महल बनाओ, इस महल में रखो। तब महल बनाना शुरू किए राजा ने, महल बनाना शुरू करते समय नारद मुनि बोले कि अभी तो बहुत हो गया, मेरे को अभी जाने दो, मैं जा रहा हूँ मेरे पिताजी के गांव में, ब्रह्मलोक में जाना चाहता हूँ मैं, बहुत दिन से पिताजी से मिला नहीं। तो राजा बोले कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करना, क्योंकि मैं भी ब्रह्मलोक में जाना चाहता हूँ और ब्रह्मा जी को यहाँ पे बुला के लाना चाहता हूँ, आप अगर कृपा करके और कुछ दिन रुक जाएंगे तो हमारा प्रसाद बन जाएगा भगवान का, तो हम लोग जाएंगे ब्रह्मा जी को लाएंगे और ये डीटीसी इंस्टॉल करेंगे, स्थापना करेंगे। नारद मुनि उनके अनुरोध पर राजी हो गए और वहां पर रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद भगवान जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी को परिक्रमा करते हुए प्रणाम करते हुए राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि दोनों मिलकर ब्रह्मलोक में निकले। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मा जी को प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी को बोले कि हे ब्रह्मदेव, आपकी कृपा से भगवान के प्रासाद का निर्माण हुआ है, आप कृपा करके आइए ताकि भगवान जगन्नाथ जी को और मंदिर का सेवा पूजा चालू करे। ये सुनकर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बुलाए और देवताओं को कहने लगे, हे देवताएं, आप लोग कृपा करके जल्दी जाओ, भगवान आविर्भाव हो चुके हैं, वहां पे सारा अरेंजमेंट्स करो ताकि मैं आऊंगा तो तुरंत ही यज्ञ विधि चालू करूंगा। तो ये सुनते ही सारे देवता लोग तुरंत आए, आकर देवता लोग आके अपना यज्ञ की तैयारी किए, नारद मुनि और इंद्रद्युम्न राजा। फिर तब तक क्या हुआ था, जब इंद्रद्युम्न चले गए थे उस समय एक गल्ल माधव करके राजा था, तो उसने क्या किया था, ये जो मंदिर खाली देखा तो खाली मंदिर है करके एक माधव का विग्रह रख दिया, लेके भगवान कृष्ण का विग्रह रखा, बोला कि माधव मंदिर है। इंद्रद्युम्न राजा आके उनको समझाए कि ऐसा नहीं, तो मगर वो गल्ल माधव युद्ध के लिए तैयार हो गया था। बाद में सभी लोग समझाए, तब तक ब्रह्मा जी भी दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी आ रहे थे, सब लोग बोले कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं, जगन्नाथ जी का यहाँ पे स्थापना होने वाला है, तो वो समझ गए गल्ल माधव, और दोनों मिलकर ब्रह्मा जी आने के बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले कि एक रत्न का रथ बनाओ, क्योंकि जगन्नाथ जी का मूर्तियां अभी दूसरे जगह पे थे, दूसरे कमरे में बनाया गया था, वहां से अभी मंदिर में लाना है, तो एक रत्न रथ बनाओ सोने चांदी का। तो ये रत्न का रथ बनाने वाला कोई सफल व्यक्ति नहीं था, इसलिए विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने रथ बना दिए तुरंत ही, उस रथ में जगन्नाथ जी बलदेव को बिठा के लाकर यहाँ पे मंदिर में स्थापना किए। ब्रह्मा जी आए और मुक्ति मंडप करके जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, उस मुक्ति मंडप पर बैठकर उन्होंने यज्ञ चालू किए। और यज्ञ में सर्वप्रथम जो यज्ञ नरसिंह है, जगन्नाथ मंदिर के राइट हैंड साइड मुक्ति मंडप के सामने एक मंदिर है यज्ञ नरसिंह करके, यज्ञ नरसिंह प्रकट हुए, 5 फणों के द्वारा शेष नाग के साथ नरसिंह देव है, और उनका सहायता से मंदिर का प्रतिष्ठा किए। और राजा का अनुरोध था कि ये मूर्ति का भी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भी जीवन न्यास होना चाहिए, है ना, जीवन न्यास करते हैं ना, मगर ब्रह्मा जी बोले कि नहीं नहीं, ये जो स्वयंभू जो विग्रह होते हैं उनका कभी भी जीवन न्यास नहीं किया जाता है, जैसे कि शालिग्राम, उनको जीवन न्यास करने की आवश्यकता नहीं, ये विष्णु स्वयं ही है, उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में स्वयं ही रहते, उनको जीवन न्यास करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी बोले इनको जीवन न्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कहके तीनों विग्रह, चारों विग्रहों को स्थापना किए और करके तब से, और ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी, तब से ये जो स्नान यात्रा है प्रचलित होके आ रहा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, स्नान यात्रा महामहोत्सव की। तो इस प्रकार से स्नान यात्रा हो रहा है, मगर और भी ऐसे कुछ कथाएं हैं स्नान यात्रा के पीछे। ये तो मुख्य कथा था कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य के बारे में, मगर स्नान यात्रा के दिन कुछ ऐसे लीलाएं किए हुए जगन्नाथ जी, वो कुछ लीलाओं को सुनेंगे छोटे छोटे, वैसे समय तो हो चुका है। एक बार की कथा है, आप लोगों ने देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी को किस प्रकार से ये हाथी का वेश बनाया गया, ये कथा हर साल हम लोग सुन रहे हैं कि इस प्रकार से कर्नाटक राज्य में एक भक्त थे, वो गणपति के भक्त नहीं थे, उनका नाम गणपति भट्ट था मगर वो विष्णु के भक्त थे। कहीं कहीं पे हम सुनने के मिलता है कि गणपति भट्ट करके नहीं, गणेश जी का भक्त करके नहीं, वो विष्णु के ही भक्त थे। वो विष्णु भक्त थे मगर वो परम ब्रह्म के रूप में, मतलब जैसे 3 प्रकार के भक्त, ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं, परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं, और भगवान के रूप में, वो परमात्मा के रूप में भगवान को जानते थे, मगर वो वैष्णव ही थे, परमात्मा को जानते, परम ब्रह्म को जानते थे। और वो हमेशा शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते ब्रह्म के बारे में बहुत सारा ज्ञान उनको मिला था, ब्रह्म पुराण पढ़ते पढ़ते अनेक पुराणों को, और उनको यह मालूम था कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म का एक बार दर्शन करता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वापस नहीं आता, उसको मुक्ति मिल जाता है, और यही सबसे आनंद चीज है, इस संसार के जीवन में कुछ नहीं रखा है, उसका स्त्री बच्चे सब होते हुए भी वो उनसे अनासक्त रहता था। मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं क्योंकि अत्यंत देर हो चुका है। तो गणपति भट्ट के अंदर ये जो वैराग्य है तीव्रता से बढ़ने लगा, और वो किताबों को ढूंढते ढूंढते उसको पद्म पुराण से एक जगह मिला कि पद्म पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक जगह मिला कि ये जो परम ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म ये पुरुषोत्तम धाम में नीलाचल में निवास करते हैं। तो
तो अच्छा परम ब्रह्म यहां निवास करते हैं, हम इसी शरीर में देख सकते हैं। वो सोचा नहीं था कि इसी शरीर में ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। तो बोला कि अरे इस घर संसार को दूर रखो और सब छोड़े और वो निकल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। चलते चलते गए, जब भी खाना मिलता था खाते थे, नहीं तो चलते चलते जा रहे थे। जाते 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 जो एंट्रेंस है जगन्नाथपुरी का, वहां पे एक शंख मतलब ब्रिज है, अठर नला कहते हैं, देखे होंगे आप लोग। वो अठर नला के पास पहुंचे, वो एंट्रेंस है, वहां पे देखे तो बहुत लोग जो है आनंद से कीर्तन करते हुए खाते हुए प्रसाद वापस आ रहे हैं। ये गणपति भट्ट ने देखा, बोले अरे ये लोग वापस कैसे आ रहे हैं। बोले तुम लोग कहाँ गए थे। ना हम लोग जगन्नाथपुरी में गए थे। तो आप इतना आनंदित क्यों हो। क्योंकि हम परम ब्रह्म का दर्शन किए हैं और परम ब्रह्म का दर्शन करके हम आनंदित हैं। तो बोला कि मगर वापस कैसे आ गया तुम लोग। वो लोग बोले ये पागल हो गया करके वो लोग चले गए। ये क्या सोचने लगा गणपति भट्टारे, मैंने तो अभी तक पढ़ा हूं कि ब्रह्म का जो भी दर्शन करता है या उनके सामने जाता है ब्रह्म में लीन हो जाता है या उसको मुक्ति मिल जाती है, मगर ये लोग वापस कैसे आ रहे हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं या पुराण झूठ है, शास्त्र झूठे या ये लोग झूठ, उसको समझ में नहीं आया। तो बार बार उस लाइन को पढ़ रहा था। नहीं नहीं, नीलाचल में परम ब्रह्म है, ब्रह्म का जो दर्शन करता है उसका तो मुक्ति होता है, तो लिखा है, मगर ये लोग तो वापस आ गए यार उनको देख के, ये कैसे हो सकता है। समझ में नहीं आया। बोला कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी आत्महत्या करता हूं। तो ये जो अंतर्यामी भगवान जगन्नाथ जान गए और एक ब्राह्मण के रूप में वहां गए कि बोले कि हे ब्राह्मण आप क्या कर रहे हो। ना मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है शास्त्र गलत है या लोग गलत है। नहीं क्यों क्या हुआ ना, मैंने देख रहा हूं कि ब्रह्म को देखने से लीन हो जाना चाहिए, मगर ये लोग तो वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्म है ही नहीं। अगर इस जीवन में मैं ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो इस जीवन का रख के क्या फायदा, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। बोले कि अरे कैसे मूर्ख के कार्य कर रहे हो, को तुम्हारे मनोकाल्पनिक चीजों से थोड़े ब्रह्म होते हैं। आपने सोच लिया ब्रह्म नहीं है, ये कैसा हो सकता है, शास्त्र में जो लिखा वो सही है। देखो ब्रह्म कैसे हैं, वो मनोवांछा पूर्ण करने वाले हैं, जो जो कुछ भी इच्छा करता है उसको पूरा करते हैं। लिखा है कि नहीं। हाँ लिखा है। अभी कोई उनके सामने गया और ब्रह्म का दर्शन किया और ब्रह्म को बोला कि हे ब्रह्म, हे भगवान मुझे उद्धार कीजिए, मेरे परिवार सुखी रखिए, मेरे बीवी बच्चों को सुखी रखिए, मेरा गाड़ी मिलना चाहिए, मुझे खाना मिलना चाहिए, मुझे घर मिलना चाहिए, मेरा घर परिवार सुखी हो जाना चाहिए। तो ये मनोवांछा पूर्ण करने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। तो जो भी कुछ जो भगवान ब्रह्म को मानते हैं ब्रह्म उसको देते हैं। तो इन लोगों ने उनको ऐसा मांगा कि मेरे को घर चाहिए, परिवार चाहिए, संसार चाहिए, तो उनको दिया, वो लोग वापस आ गए। और जो जाके बोलेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, इस संसार से छुटकारा चाहिए, तो उसको मुक्ति देंगे और छुटकारा देंगे। बोला ऐसा है क्या। तो ये सोचकर बोला क्या तब तो जाऊंगा ब्रह्म का दर्शन के लिए। फिर वो गए दर्शन करने के लिए और जाके देखें तब 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 तक तो ये स्नान यात्रा का दिन था, देव पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा। और जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा सुदर्शन जो है स्नान मंडप में थे। स्नान मंडप जो है थोड़ा ऊंचाई में है, वो रोड से वो दिखते हैं पूरा बड़े बड़े। जाके देखें अरे ये तो तीन मूर्तियां हैं, मगर ये ऐसा कैसे हो सकता है, इन मूर्तियों में तो सूंड नहीं है, ब्रह्म में तो ब्रह्म मतलब सूंड होना चाहिए, वो उनके मन के कल्पना है। मगर ऐसा नहीं लिखा है कि वो गणेश जी का भक्त करके नहीं लिखा, उनका कल्पना है कि ब्रह्म मतलब सूंड होना चाहिए। बोले कि सूंड नहीं है तो ये ब्रह्म नहीं है। कभी कभी जिद्दी होता है ना कुछ भक्त, वैसा भक्त था। तो प्रणाम भी नहीं किया, वापस आ गया रोते रोते। तो जगन्नाथ जी रात को अपने एक भक्त को उठाए, बोले कि जाओ वो मेरा भक्त है उसको बुलाओ, बोलो कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मेरा सुंड भी है, उसको बोलो आके देखेगा मेरे को। तो जाके उनको रिक्वेस्ट किए तो वो आए, आके देखे तो सचमुच भगवान का सुंड है। तो पुजारी भी हैरान हो गए कि इस प्रकार से जब बलदेव जी जगन्नाथ जी का सुंड देखे, हस्ती वेश को देखे। और जैसे ही उस गणपति भट्ट ने दर्शन किए और वो प्रार्थना किए कि हे भगवान, हे ब्रह्म, आप कृपा करके मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि हर देवस्थान के दिन आप ये हस्ती वेश को धारण करेंगे। तो तब से भगवान ये हस्ती वेश को धारण करते हैं। और एक घटना है जो कि मायापुर में राजापुर के जो जगन्नाथ जी हैं वो 2005 की सत्य घटना है। वहां के जो मुख्य पुजारी है मायापुर के जननिवास प्रभु, उनका कहना है स्नान यात्रा के बाद भगवान को अनवसर के समय पर रखा जाता है और उस समय भगवान के विग्रह का नव यौवन वेश उनको श्रृंगार किया, उनको पेंटिंग की जाती है। तो ये जननिवास प्रभु गए थे पेंटिंग करने के लिए जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का उस दिन पेंटिंग किए और पेंटिंग करने के बाद जगन्नाथ जी को सुला के रख दिए और जैसे खड़े वैसे बिठाए नहीं और ऐसे एक उसके चटाई के वो सुला दिए, क्योंकि वो सूखेगा, पंखा पंखा चलाए सुला दिए और ये जाके सो गए रात को। सोए आधी रात को देखे तो उनका शरीर जल रहा है, खुद का जननिवास प्रभु का शरीर जल रहा है एकदम से। वो घबरा के बोले कि ऐसा आग लगने जैसा जल क्यों रहा है मेरा शरीर। वो सोचे कि नहीं, वो जो अन्नवसर के टाइम भगवान को भोग लगता है ना जो औषधि, तो बहुत आयुर्वेदिक होता है, वो पी लिया ज्यादा इसलिए शायद शरीर जल रहा है। बोले कि नहीं नहीं, वो पीने से इतना जलन तो नहीं होना चाहिए, एकदम से जल रहा है शरीर, सहन नहीं हो रहा है। फिर वो भगवद गीता पढ़ने लगे, थोड़ी देर के बाद ठंडा होगा करके पंखा चलाए, मगर शरीर का जलन उतर ही नहीं रहा है। तो थोड़ा इधर उधर घूमने लगे, भगवद गीता पढ़ने में टाइम बिताए, ऐसे करते करते छटपट होते होते सुबह हुआ। और सुबह वो सिक्योरिटी जो मंदिर का था वो आके बोला कि प्रभु जी मैंने थोड़ा कुछ तो गड़बड़ी है ना, क्या ना मंदिर में कोई रात को था। नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, मैं मंदिर बंद किया, मंदिर में कोई नहीं, नहीं मंदिर में कोई था, मैं बैठा था और वहां एकदम से अच्छा इस प्रकार से आवाज आया है और इस प्रकार से आवाज आ रहा है, और जैसे कि कोई ऐसा कांपते है ना, वो कांपने का आवाज आ रहा है, छटपट हो रहा है कोई, और आवाज आया तो मैं जाके देखा, वो थोड़ा दीवार से सुना तो सचमुच कोई वार्तालाप होने जैसा लग रहा है, जैसे कि ठंडी लग रहा है उनको और कांप रहे हैं, जैसे कि किसी को बुखार होता है तो तड़पता है, ऐसा लग रहा था। तो जननिवास प्रभु अंदर जाके देखे, जगन्नाथ जी को सुला के आ गए थे। बोले अरे बाबरे, कितना बड़ा गलती किया कि जगन्नाथ जी को सुला दिया था, और वो स्नान नहीं हुआ था और पेंटिंग किए जगन्नाथ जी को, तो एकदम से बुखार चढ़ गया था जगन्नाथ जी को। और सचमुच भगवान जगन्नाथ जी को बुखार होता है इस समय, मगर ये जो अनवसर का समय है ये तो कहा जाता है भगवान को बुखार होता है, मगर गौड़ीय वैष्णव जो है अलग भाव उसका व्यक्त करते हैं। गौड़ीय भाव के हिसाब से भगवान जगन्नाथ जी जो है कुछ दिनों के जो है वो वृंदावन जाने वाले हैं, राधा रानी के पास या गोपियों के पास। अभी यहाँ पे राजा के वेश में है, लक्ष्मी जी साथ में है, मगर पूरे दिन भर 3 घंटा छोड़ के बाकी सारा समय भक्तों के लिए बिताते हैं, लक्ष्मी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। इसलिए सोचा अगर मैं अभी 9 दिन के लिए चला जाऊंगा तो ये मेरा जो होम मिनिस्टर है आने के बाद पूरा डंडा मारेगी मेरे को, इसलिए मुझे थोड़ा इसको भी संतुष्ट कर लेना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अनवसर, अवसर मतलब समय, अण मतलब नहीं, किसके लिए समय नहीं है, बाहर के लोगों के लिए अभी समय, अभी तुम लोग के लिए समय नहीं, साल भर बहुत हो चुका, अभी मैं थोड़ा सिक टाइम देना चाहता हूं मेरे पत्नी के लिए, लक्ष्मी के लिए, ताकि मैं ये 15 दिन मैं लक्ष्मी को प्रसन्न कर दूं, उसको खुश रखूं, बाद में मैं राधा रानी के पास जा सकूं। ये भाव से उन्होंने ये अनवसर का समय बिताते हैं कि अण मतलब नहीं, अवसर मतलब टाइम, टाइम नहीं है किसके लिए, हम लोग के लिए, और टाइम किसके लिए है, माता लक्ष्मी के लिए। ये जो समय है हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए एकदम से महत्वपूर्ण ऐसे बताया जाता है, क्योंकि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन उनके प्राकट्य लीला के अत्यधिक समय जो है जगन्नाथपुरी में बिताए थे, और जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा के समय वो अत्यंत प्रसन्न रहते थे। स्नान यात्रा देखी प्रभु पाइला बड़ सुख, ईश्वर रे अनवसर पाइला महादुख। चैतन्य महाप्रभु जैसे स्नान यात्रा देखे तो एकदम से प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, मगर देखे कि स्नान यात्रा के तुरंत बाद जो है जगन्नाथ जी का दर्शन बंद हो गया। यह अनवसर समय है, मगर चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किए, अनवसर जगन्नाथ नापाया दर्शन विरहे आलारनाथ करिला गमन। चैतन्य महाप्रभु आलारनाथ नामक एक जगह में चले गए, वहां पे भगवान को दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ पे तो कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, इसीलिए वो गए आलारनाथ। ये आलारनाथ क्या है, वहां से जगन्नाथपुरी से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा पहाड़ जैसा छोटा सा ऊंचाई है, उसको ब्रह्मगिरी कहते हैं। उस ब्रह्मगिरी के ऊपर भगवान विष्णु का एक विग्रह है, उस विग्रह का नाम है आलारनाथ। ये ब्रह्मगिरी क्यों पड़ा था, जब ये ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा के लिए आए थे ब्रह्मलोक से, पहले उस पहाड़ के ऊपर उतरे थे। अभी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आता है तो ऊंचा स्थान पे उतरेगा ना, ऐसे ब्रह्मा जी का स्वान आया तो वो ब्रह्मगिरी में उतरा, वहां से ब्रह्मा जी नीचे आए थे, इसलिए उसका नाम ब्रह्मगिरी पड़ा। और एक जगह वर्णन आता है इसको ब्रह्मगिरी इसलिए कहा गया, सतयुग में ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु का तपस्या किए थे इस पर्वत के ऊपर। बाद में श्री वैष्णवों के कुछ गोस्वामी हुआ करते थे, जैसे हमारे षड गोस्वामी है ना, उस प्रकार से हमारे गौड़ीय वैष्णवों का षड गोस्वामी, वैसे श्री वैष्णवों का भी कुछ गोस्वामी है, 12 लोग हैं, उनको 12 द्वादश अलवार कहते हैं, 12 अलवार हैं, अलवारों की कथा सुने होंगे। ये 12 अलवारों में से कुछ अलवार जो है इस पर्वत के ऊपर आए थे, वो देखे कि अच्छा जगह है, भगवान विष्णु का आराध्य जगह है करके उन्होंने एक चतुर्धा मूर्ति, चतुर्भुज के एक विष्णु का विग्रह का स्थापना किए और उनका पूजा किए। ये अलवारों के द्वारा विष्णु का पूजा होने के कारण उस विष्णु मूर्ति का नाम पड़ा अलवार नाथ, और ये अलवार नाथ धीरे धीरे से लोगों की मुख से परिवर्तन होते होते अलार नाथ हो चुका है आज, वो असलियत में अलवार नाथ है, अलवारों का सेवित विग्रह है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी दर्शन नहीं मिलते हैं तो अलवार नाथ चले जाते हैं वहां पे भगवान का दर्शन करने के लिए। मगर देखिए अलवार नाथ में चतुर्भुज विष्णु है, मगर चैतन्य महाप्रभु जब भी दर्शन करते हैं तभी ये दो भुज गायब हो जाता है, उनका दो ही भुज बसता है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु है कौन? चैतन्य महाप्रभु है राधा विरह विदुर, सॉरी जगन्नाथ जी जो है राधा विरह विदुर, और चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण विरह विदुर। भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं। आप लोगों ने उस कथा जानते होंगे वृंदावन के, जब ही रासलीला चल रहा था तो गोपियों के मन में, राधा रानी के मन में एक रंच मात्र का एक प्रकार अहंकार हुआ कि हम श्रेष्ठ नारियां हैं, कि भगवान पुरुषोत्तम हमारे साथ हैं। ये जानकर भगवान अदृश्य हो गए वहां से, और अदृश्य होके एक कुंज में जाके चार भुजा वाले विष्णु बन के खड़े हो गए। तो गोपियां ढूंढने लगे और उस कुंज के पास गए, देखे कि विष्णु है, बोले कि हे नारायण, हे विष्णु, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा, हमारे श्याम सुंदर को देखा, गोपीनाथ को देखा? विष्णु बोले नहीं देखा। भगवान कृष्ण बोले नहीं देखा, चले गए। फिर राधा रानी ढूंढते हुए आई, राधा रानी आ गई कुंज के सामने, वो देखी विष्णु, जैसे राधा रानी कृष्ण को देखी तो कृष्ण घबरा गए कि उनका दो हाथ गायब हो गया अपने से, यानी अपने कंट्रोल में भी कृष्ण नहीं रह पाए कि अपना वो चतुर्भुज अपने से बने थे मगर उनका दो हाथ गायब हो गया, दो हाथ और दो ही हाथ बच गया। क्योंकि राधा रानी के सामने कभी भी ऐश्वर्य रूप काम नहीं करेगा, भगवान का ऐश्वर्य काम नहीं करता है, क्योंकि इतना माधुर्य है अंदर है? तो अपने आप से दो हाथ गायब हो गए। वैसे ही जब श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कृष्ण विरह में रहते हैं और ये अलारनाथ विष्णु के विग्रह का दर्शन के लिए आते हैं तो विष्णु विग्रह दो भुजा वाले हो जाते हैं। मगर तो चतुर्भुज विष्णु में कभी लीलाएं नहीं करते हैं, वो चतुर्भुज हैं मगर वहां भाव ये माधुर्य भाव होने के कारण वो कृष्ण के रूप में ही रहते हैं वहां पे। क्योंकि एक बार की असली घटना से पता लगता है, वहां पे एक जो ब्राह्मण है, जो पुजारी था वहां का, उसने भिक्षा मांगने के लिए बाहर गया था तो अपने बच्चे को, छोटा बच्चा, उसका नाम मधुसूदन था, उसको भगवान की सेवा पूजा में लगा दिया। तो ये बच्चा जो है उसको कुछ तो आता नहीं था मंत्र विधि, वो खीर बनाता था गरम गरम भगवान के सामने लेके रखता था, बोलता है देखो भैया भगवान, आप मेरे को कुछ मंत्र वंत्र आता नहीं है, अभी पता नहीं आपको कैसे खाने के लिए बोला जाता है, मेरे पिताजी बोलते हैं, मेरे पिताजी मुझे सेवा दिए तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए आप आके खा लो ना खीर, बच्चे बोलते हैं ना ऐसे। बोला, दरवाजा बंद किया, बाहर खेलने लगा। तो उसका माँ बोली, अरे भोग चढ़ाया था, उठाया? नहीं नहीं, वो मैं बोल दिया खाने के लिए। अरे उठाना चाहिए उसको भोग और लेके आना चाहिए घर में। तो बच्चा फिर अंदर गया, जाके देखा तो जो खीर रखा हुआ था पात्र वो खाली है। अरे मम्मी, तक मम्मी खा गए, मैं दिया था खाने के लिए, खा गए। अरे क्या बकवास कर रहा है। मम्मी सोचने लगी बच्चा थोड़ा चपल है, चतुर है, कि शायद भगवान का भोग खा गया रहेगा, तो डांटने लगी उसको। बोला कि नहीं मम्मी, सचमुच खा गए भगवान, मैं क्या करूं। तो मम्मी तो और दो चार दिन देखें, तो मम्मी को लाके दिखाया, देखो है नहीं, खा गए। तो मम्मी आश्चर्य हो गई। तो ऐसे कुछ दिन के बाद एक दिन ब्राह्मण वापस आया। ब्राह्मण वापस आने के बाद ब्राह्मण को इस बात पता लगा, ब्राह्मण बोला कि ये कैसे हो सकता है, आज तक तो मैंने पूजा किया, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो हुआ नहीं करके बोला, तो बोले कि ठीक है आज भोग लगाओ। तो वो जो दरवाजे के पीछे छुपके था वो ब्राह्मण, बच्चा भोग लगाया, बोला कि भगवान मेरे पिताजी तो आ गए मगर अभी इधर नहीं आए हैं, इसलिए आप खा लीजिए, मेरे पिताजी कल से आपकी सेवा करेंगे, कहके लगाया और दरवाजा बंद करके चल दिया। और जैसे गया तो एक बाल गोपाल आया वहां से, हैं विग्रह से एक गोपाल प्रकट हुए और बैठकर एकदम से खाने लगे। खाते खाते ब्राह्मण देख रहा था कि वो गर्म था, तो हाथ डुबा रहे थे मगर रहा था, फिर भी उनको इतना खाने की इच्छा था कि गर्म भी खाने लगे तो उनके शरीर में और गिर गया। तो वहां से जो है वो क्या होता है ना, गरम गिरता है तो फोड़ी जैसा हो गया और वो सफेद कलर का चिन्ह रह गया, और अभी भी वो चिन्ह है, क्यों खीर खाने का चिन्ह अभी भी है, उनको जल गया था वहां पे। तो जैसे ब्राह्मण देखा तुरंत जाके हाथ पकड़ लिया गोपाल का, बोले अरे तुम सारा रोज खा जाते हो तो हम क्या खाएंगे। तो भगवान ने बोला कि इसीलिए मैं तुम्हारा भोग कभी खाता नहीं हूँ, तुम लोग जो है ना मेरे भोग को भोग करने के लिए तुम्हारा इच्छा रहता है, इसीलिए आगे जाके तुम्हारा वंश जो है ना निपात हो जाएगा, तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा, तुम्हारे वंश में और कोई जन्म ही नहीं होगा, और ये जो तुम्हारा बच्चा मधुसूदन है वो मेरे धाम में आएगा और तुम्हारा वंश निपात हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ठाकुर की संपत्ति को, भगवान की संपत्ति को एकदम से ध्यान से यूज करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जैसा, इलेक्ट्रिसिटी सुनने से कैसे करंट मारता है वैसे ही उसको यूज करना चाहिए, नहीं तो वंश का भी अवस्था ऐसा हो सकता है। ऐसा अनेक और भी अनेक इस स्नान यात्रा की कथा के कारण, तो वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे ये जो 15 दिन तक, क्योंकि भगवान कृष्ण को वहां दर्शन करते थे, इस प्रकार से अलारनाथ है। तो हम लोगों को जितना चाहे उतना आंख भर भर के जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेना चाहिए, ताकि वो अनवसर में जाएंगे, फिर हमें नेत्रोत्सव के दिन भगवान जगन्नाथ जी जो है दर्शन देंगे। और 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक रोजाना सायंकाल संध्याकालीन क्या 7:45 से 9 बजे तक जगन्नाथ जी के लीला के ऊपर कथा होगा। आप लोग कृपा करके जगन्नाथ कथा सुनने के लिए आइए। हरे कृष्ण। स्नान यात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब की जय।
स्नान यात्रा महा